Okay. Allons-y. Ramkatha. हरे कृष्णा। तो मैं सोच रहा था कि कुछ भक्तों ने ये इंसिस्ट किया था कि वो रामचंद्र के विषय में कथा सुनना चाहते हैं, और राम की कथा तो आप सबको जानते हो, रामायण इतने प्रसिद्ध है कि बच्चों को भी याद होता है ना। फिर भी हम थोड़ा सा कथा करेंगे आपके समक्ष। तस्मै श्री गुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
ओके, तो मैं सोच रहा था कि हम आज आपके साथ कुछ रामचंद्र के विषय में कथा करना चाहते हैं। राम के विषय में रामायण आप सब जानते हो, है ना, जिसमें कितने कांड हैं रामायण में? अच्छा, एक हाथ उठाकर फिर सारे कांड बता सकते हो, क्योंकि यू नो फिर बहुत सारा मिक्सअप होता है, सुनाई नहीं देता क्या बोल रहे हैं। तो जिसको पूरा पता है या प्रयास करना चाहते हैं तो हाथ उठाओ फिर बोलो। कोई प्रयास करना चाहते हैं? हाँ, पीछे पहले हाथ को। अच्छा ओके, आप बताना चाहते हो? काउंट करो आत्मा। अच्छा, युद्ध कांड हो गया?
नहीं, युद्ध कांड छठा।
युद्ध युद्ध अच्छा
उत्तर कांड
ओके। तो ये और किसको पता है? पीछे से हाथ उठा क्या? हाँ बताइए। युद्ध फाइट हो गया सेवन। तो रामायण हर युग में, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है, इसलिए ये रामचंद्र की लीला रामायण जो है वो सारे देवता ब्रह्मा जी सब देखते हैं उनको हर युग युग में। लेकिन हर एक युग में कुछ ना कुछ चेंज होता है। ऐसे इस बार यू नो रावण ने शिव जी का उपासना किया था, तो कभी ब्रह्मा का उपासना करेगा, या फिर इस बार रावण ये था एंड या दस दस मुख वाला तो या सौ मुख वाला हो सकता है रावण. तो ऐसे अलग अलग लीलाएं भगवान प्रस्तुत करते हैं. लेकिन इस समय की जो रामलीला है, इस बार इस दिन की जो रामलीला, वो लीला हम जानते हैं किस रूप से, ये वाल्मीकि रामायण के रूप में, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण जो है वो ऑथोराइज्ड रामायण है. और सभी पुराणों में, जैसे कृष्ण की लीला और सभी पुराणों में बताई गई है, वैसे वाल्मीकि रामायण इज ऑल्सो, जैसे वाल्मीकि रामायण ऑथोराइज है, वैसे दूसरी रामायण भी ऑथोराइज है. रामायण एक ही ऑथोराइज है, लेकिन रामलीला ऑथोराइज है. वाल्मीकि रामायण एक ही ऑथोराइज है, लेकिन बाकी जो रामलीला और पुराणों में वर्णन की गई है, तो वो रामलीला ऑथोराइज है. तो हमारे वैष्णव आचार्य जो है वो हमें बताते हैं कि कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए. ऑफकोर्स श्री प्रभुपाद ने रामलीला के ऊपर ज़्यादा प्रवचन नहीं दिए थे, और श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था कि अगर आपको रामलीला पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना, वाल्मीकि रामायण से पढ़ना. सो जनरली वी डिवोटीज रीड वाल्मीकि रामायण, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं. और रामचंद्र के विषय में श्रीमद् भागवत हम के फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर में एक प्रसिद्ध श्लोक है, रामचंद्र के विषय पे नहीं लेकिन भगवान के सारे अवतारों के विषय में एक श्लोक है. और उसके तात्पर्य में, बड़ा तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने लिखा है, तो उस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन भगवान लीला प्रस्तुत करते अलग अलग रूप में प्रकट होकर के. जब वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं तो वो कोई एक विशेष गुण उसका वो प्रदर्शित करते हैं, कोई एक विशेष गुण. जैसे नरसिंह देव की लीला में उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया, वामन देव की लीला में उन्होंने सौंदर्य प्रकट किया, मोहिनी और वामन, और कुछ अंश तक राम ऑल्सो सौंदर्य. रामचंद्र बड़ा ही बड़े ही सुंदर थे. एंड धन्वंतरी के रूप में उन्होंने ज्ञान, आयुर्वेद, फिर कपिल देव के रूप में उन्होंने ज्ञान प्रस्तुत किया. क्षत्रिय की वो क्रोध में दो है, परशुराम और नरसिंहदेव दोनों. तो ऐसे अलग अलग गुण भगवान प्रकट किए अलग अलग अवतार में. तो रामचंद्र में उन्होंने प्रकट किया मर्यादा, इसलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम. मर्यादा का क्या अर्थ है कि जो धर्म परायण व्यक्ति होता है उसका आचरण कैसा होना चाहिए. एक क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले एक मनुष्य का उन्होंने देश या एक स्वरूप उन्होंने लिया, मानव स्वरूप, इसलिए और उनकी मर्यादा के कारण उनके मॉरल, ये मॉरल बिहेवियर जो उनके है रामचंद्र के, वो सब लीलाओं को सामान्य जन बहुत पसंद करते हैं. इसलिए क्योंकि धीरे 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 ये मॉरालिटी है, नैतिकता, वो कलयुग में नष्ट होती है. कलयुग में नैतिकता धीरे 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 समाप्त हो जाती है, और इसलिए अनैतिक वातावरण में जब कोई चीज़ नैतिक आपको दिखती है तो स्वाभाविक है कि आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, सम्मान करोगे, ना, क्योंकि आप उससे प्रभावित होते हो. लेकिन रामचंद्र की लीला ऐसी है कि सतयुग में, त्रेता युग के शुरुआत में, यू नो त्रेता युग के सम टाइम इन त्रेता युग में उन्होंने, रामचंद्र ने ये लीला प्रस्तुत की थी त्रेता युग में. तो आज द्वापर भी चला गया, द्वापर में भी रामचंद्र इतने प्रसिद्ध थे, बड़े प्रसिद्ध थे, और उसके बाद कलयुग आ गया, कलयुग में भी आज भी इतने प्रसिद्ध, अभी भी हमें पता है कि आज भी कई ऐसे गांव है, हर एक गांव में राम मंदिर होता है, राम जी मंदिर गुजरात में तो है कम से कम, है ना, राम जी मंदिर होता है। और वहाँ पर शाम के समय भी रात के समय भी कुछ लोग इकट्ठा होकर राम कथा को गुणगान गाते हैं, कुछ ना कुछ। हमने यहाँ अहमदाबाद में भी देखा है बहुत जगह राम जी का चरित्र गाया जाता है अलग अलग, यू नो, खास करके हनुमान जी का सुंदरकांड और वॉट एवर। लेकिन ये सब चीज़ को भले कोई किसी भी हिसाब से पढ़े, कोई धर्म की इच्छा से पढ़े या रामचंद्र का गुणगान या धार्मिक क्रिया के रूप में पढ़े किसी भी तरह से, लेकिन रामचंद्र को फिर भी लोग आज कितना भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति वो भी राम राज्य को कभी नकार नहीं सकता। सब हमारे राजनेता भी जानते हैं कि राम के समय में जो राज्य था वो आदर्श राज्य था और रामचंद्र आदर्श राजा थे, ये राजनीति लोग भी जानते हैं। इसलिए रामचंद्र बड़े प्रसिद्ध स्वरूप में है। तो इसलिए रामायण इतना महान है, उनकी लीला इतनी महान है कि एज सच तो हम उनका हम समझ नहीं पाते या हम उसको उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकते। सो बिग रामचंद्र की लीला इतनी महान है। फिर मैं सोचा था कि अगर इसमें से अगर हम पिछले साल कुछ भक्तों की सहायता से मुझे ये रामचंद्र गुणगान गाने का अवसर प्राप्त हुआ था, करीब 8-10 घंटे तक मैंने रामचंद्र के विषय में प्रवचन दिए थे अलग अलग दिन, तो जिसमें हमने कई रामचंद्र के लीलाएँ जो है उनको हमने कवर किया था अलग अलग रूप में। बहुत सारी कथाएं रामचंद्र के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी। ऐसे तो आप जानते हो कि संक्षेप में कि रामचंद्र का प्रकट हुआ था दशरथ महाराज और उनकी माता थी कौशल्या, ये तो आप सब जानते हो। और इसके पहले भी ये सब आपको पता है कि किस तरह से रामचंद्र सीखने गए थे विद्या विश्वामित्र के पास, और रामचंद्र के पहले भी ऐसी सब कथाएं हैं कि किस तरह से मिथिला नगरी का नाम मिथिला हुआ, क्योंकि एक राजा का नाम था मिथिला, ये कोई जनक राजा जो है वो इसी राजा का नाम जनक नहीं है, ये जनक के फादर भी जनक थे, उनके फादर भी जनक थे, सब पोस्ट जनक। तो और फिर किस तरह से सीता माता का जन्म हुआ था, किस तरह से उन्होंने पृथ्वी में से उनको लाए थे, तो ये कथाओं का वर्णन आता है रामचंद्र के जन्म से पहले। और रामचंद्र की खास करके जब उनके पिता का कोई संतान नहीं था दशरथ महाराज का, तो किस तरह से उनको ये संतान प्राप्ति की सूचना दी गई थी, उनको कहा गया था कि आप ऐसे एक ऋषि को आपके राज्य में लाना पड़ेगा कि जो ऋषि के पास ये शक्ति है कि उनको इधर लाने से ही आपका घर में संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसे ऐसे कुछ कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये कथाएं भी बहुत डीप है, बड़ी बड़ी कथाएं, इट्स नॉट स्मॉल। लेकिन वो सारी कथाएं तो शायद आप जानते हो कि किस तरह से आप पूर्व जन्म दशरथ महाराज ने रामचंद्र को जन्म दिया, इट्स वेरी नाइस स्टोरी, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक बिकॉज वी ऑलरेडी स्पोक मेनी टाइम्स अबाउट दैट। हमने कई बार इसकी चर्चा की कर चुके हैं, तो फिर भी अगर आप सुनना चाहेंगे तो और कभी किसी दिन करेंगे। लेकिन रामचंद्र भगवान उन्होंने सीता का जब उन्होंने हरण सीता को जैसे उन्होंने स्वयंवर में जीतने के बाद जब वो गए अपने धाम अयोध्या, लेकिन उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई और तब जाके रामचंद्र को सीता की खोज के लिए निकलना पड़ा सब जगह। मैंने बड़े बड़े ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि कौशल वजह कैकेयी ने अपने वरदानों का दुरुपयोग करके दशरथ महाराज को यू नो मार ही दिया समझ लो, और उन्होंने जो अपनी पत्नी ने अपने सुहाग का यू नो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष के कारण, बड़ी भयानक चीज़ है ईर्ष्या। कैकेयी को इतनी ईर्ष्या थी, और ये ईर्ष्या कैसे जन्म हुई, ऐसे कोई उन्होंने कोई कोई ऐसे कोई कोई गुलाब जामुन ऐसे नहीं खाए थे कि इससे ईर्ष्या आए, या फिर ऐसा कोई नहीं था कि वो बाजार में गए और ख़रीद करके लेके आए, लेकिन उनकी संगति बहुत इम्पोर्टेंट थी। हर एक भक्त की संगति ही हमें सिखाती है, उनकी संगति ऐसी थी ऐसे व्यक्ति की जो मूर्तिमान ईर्ष्या जैसी, और उनकी संगति करेंगे तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी संगति आपको भले अच्छी लगे, कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये संगति अच्छी लगती है, लेकिन ये संगति आपको कितना कष्ट दे रही है, आपके गुणों में क्या परिणाम आते हैं, देखो आपके गुण कैसे होते हैं, ये हम परवाह नहीं करते, हम तो बस मुझे चाहिए, बस मुझे ये संगति चाहिए तो मैं ये संगति लूँगा। लेकिन देखिए क्या परिणाम हुआ कि वो ईर्ष्या वाली संगति हुई, जो जो लोग ईर्ष्यालु है ऐसे लोगों की संगति करने से आप क्या धार्मिक बन जाओगे, आप पवित्र बन जाओगे? नहीं, आप भी ईर्ष्यालु बन जाओगे। तो वो ईर्ष्या उनके मन में इंस्टॉल की गई किसके द्वारा? मंथरा के द्वारा, उनको उनके हृदय में जो संचार किया गया ईर्ष्या का जोरों से, और इतनी भयानक ईर्ष्या के कारण उन्होंने जो उनका सबसे प्रिय पुत्र राम को वो सबसे प्रिय मानती थी, तो उनके सामने उन्होंने भरत को राजा बनाने के कारण उन्होंने राम को वनवास के लिए आज्ञा मांगी। और क्या उन्होंने दो वरदान मांगे थे ना, कौन से दो वरदान थे? भरत को राजा और राम को वनवास। तो इसमें सबसे पहला वरदान कौन सा था पता है? भरत को राज्याभिषेक, ये पहला वरदान था, और दूसरा वरदान था राम को वनवास। ये दो वरदान मांगे, पहला और दूसरा, ऐसे ये पहला वो दूसरा वो, उसके पीछे रीज़न ये था कि पहला तो वो ये किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में वो ये नहीं चाहते थे कि राम राजा बने, भरत ही राजा बनेगा, इसलिए उन्होंने पहला मांगा कि भरत राजा बनेगा, तो वो वरदान चलेगा, वो तो दशरथ को प्रॉब्लम नहीं था, दैट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा वरदान इसलिए मांगा कि यदि रामचंद्र, देखो ईर्ष्या कितनी बुरी चीज़ है, उनकी संतुष्टि नहीं हुई कि भरत राजा बने, उससे संतुष्ट नहीं हुई, यही तो समस्या थी ना, मंथरा ने उनके कान क्या भराए थे कि भरत नहीं बनेगा राजा और राम बनेगा राजा, तो ये चीज़ तो प्रॉब्लम तो यही था, तो सॉल्यूशन हो गया कि भरत राजा बनेगा और राम नहीं बनेगा, सिंपल, ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये ईर्ष्या इतनी भयानक थी कि उन्होंने ईर्ष्यावश क्या कहा कि राम आसपास में भी नहीं होना चाहिए भरत के आसपास, क्योंकि यदि राम अपने बल का प्रयोग करके भरत को हटा दिया तो चलो राम ऐसा नहीं है, ऐसा राम ऐसा नहीं किया वो ऐसा करे कि वो बल का प्रयोग करे, लेकिन राम बड़े प्रसिद्ध है, राम के बड़े बहुत सारे भक्त हैं, वो सारे लोग मिलकर के भरत को उठा के राम को बिठा दिया तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए रामचंद्र भरत के आसपास होने ही नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको बोल दिया आप चले जाओ वनवास की ओर। वो चीज़ दशरथ से सहन नहीं हो पाई, बोले तुम मांगो दूसरा और कोई भी वरदान मांगो, एक तो मैं तुम्हारा पूरा कर रहा हूँ वरदान कि तुम भरत को राजा बना दो, मैं पूरा कर रहा हूँ वो वरदान, दूसरा आप कोई भी वरदान मांग लो ये मत मांगो। तो बोले देना है तो ये दो, नहीं तो नहीं चाहिए। देखिए, और ऐसा नहीं था कि दशरथ महाराज एक सुंदर स्त्री के मोह में फंस गए थे, ऐसा नहीं था। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि कह के एक सुंदर स्त्री बस उसके दास बन गए दशरथ, दास दशरथ थे। हाँ कि वो उसने वरदान मांगे और दशरथ ने दे दिए। अगर दशरथ का वश चलता तो दशरथ उसी समय उसे खड़क से उसका सिर अलग कर देते मस्तक से। लेकिन यहाँ पर स्त्री का मोह नहीं था, यहाँ पर क्या था, वचन पालन, शब्दों का वैल्यू था। जैसे मैंने उन्होंने वचन दिया है कि मैं ये करूँगा तो मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, है ना। बड़ा प्रसिद्ध कहा रघुकुल रीति क्या है, सदा चली आई प्राण जाए और वचन न जाए, है ना। ये रघुकुल रीति है कि प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। तो एक्चुअली हमें भी थोड़ा सीखना चाहिए, सब कलयुग में आजकल ऐसे वचन तो कोई देता नहीं है कि उसको फॉलो करे। लेकिन ये भक्त जो होते, भगवद गीता में कहा गया है कि भक्त होते वो सत्य प्रिय होते, सत्यता को पसंद करते, सत्यता होती है। सत्यता मीन्स जो वो बोलते हैं वो करते हैं, तो हमें थोड़ा सीखना चाहिए ऐसा, कि ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु जी आप बता रहे हो ठीक है माला का जब करना है कर लूँगा 16 माला ठीक है, फिर को कौन देखने आने वाला है, मैं करूँगा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच भले आप सच बोलने से ये होगा प्रॉब्लम कि आप पकड़े जाओगे या लोग आपके विषय में ऐसे क्या सोचेंगे कैसा आदमी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति निष्ठावान है, वो आगे बढ़ सकता है क्योंकि वो सच बोल रहा है। इसलिए सत्यता को पकड़ कर रखना चाहिए। तो ये समस्या थी कि वो सत्य को पकड़ के रखना था दशरथ। दशरथ का नाम दशरथ इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने रथ को 10 दिशा में फैलाया था। एक बार इंद्र को सहायता करने के लिए उन्होंने दशरथ से सहायता मांगी थी, तो उन्होंने अपनी दिशाओं अपने रथ को 10 दिशा में घुमाया था। वो ऐसे युद्ध कर रहे थे कि सब लोग देखते रह गए ये क्या हो रहा है, इसलिए उनका नाम हुआ दशरथ। तो दशरथ उनका नाम इस तरह से हुआ। तो ऐसी अनेक कथाएं मैंने आपको कुछ अंश बताए कथाओं के आगे वाले, ऐसी अनेक कथाएं हैं। लेकिन कभी प्रयास ऐसे करेंगे अगर भक्तों का कुछ इच्छा होगा और कुछ अरेंजमेंट होगी तो हम फिर से कभी एक दिन एक समय कभी ऐसे 7 दिन निरंतर, 8 दिन, 10 दिन निरंतर, या फिर हर वीक में एक दिन 2 दिन ऐसे हम रामचंद्र की कथा एक एक करके पहले से लेकर रावण का वध तक सारी कथाएं एक एक करके हम सुने धीरे 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 ऐसे। ऑफ कोर्स इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन कथा सुनने मिल सकती है हमें सो और मुझे बोलने को यह अवसर मिलेगा। आज मैं ऐसा सोच रहा था कि रामचंद्र के विषय में बोलने के लिए रामनवमी के पहले मेरे पास केवल यही 1 घंटा 1.5 घंटा बचा है, तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद तो फिर रामचंद्र के विषय में बोलने को मुझे अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में फिर हमारे फेस्टिवल शुरू हो रहे सेकेंड और थर्ड इज रथ यात्रा राइट, 2 और 3 रथ यात्रा है और फिर 4 से हमारा बड़ा प्रोग्राम है पंडाल, उसमें कई श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स यहाँ पर आने वाले हैं और वो अपने ज्ञान को फैलाएंगे, लेक्चर देंगे। भक्ति विश्राम माधव महाराज भी आएंगे वृंदावन से, दीनबंधु प्रभु आएंगे शायद, जय ध्वज प्रभु, कुलमारूप प्रभु, भीमा प्रभु, तो ये आने वाले हैं, इतने सारे इतने भक्त आएंगे। सो 1, 2, 3, 5 महानुभाव हुए, तो उन सब की कथाएँ होगी यहाँ पर और फिर रामनवमी होगा। तो मैं सोचा कि रामचंद्र का जो भक्त होता है जनरली, रामचंद्र का अपना एक लोक है पता है आपको, गोलोक अयोध्या या वैकुंठ अयोध्या रामचंद्र का एक लोक है जहाँ पर निरंतर राम की सेवा होती है। और रामचंद्र के कोई दास के दास बनना चाहे तो वो सबसे पहले किस दास की सेवा करना पसंद करेगा, हनुमान की, है ना। तो रामचंद्र की कृपा का खजाना किनके पास पड़ा है, हनुमान जी के पास पढ़ा है। तो मैं सोच रहा था कि हम आपके साथ आज हनुमान जी के बारे में चर्चा करें, रामचंद्र के भक्त का। हनुमान जी की कथा तो आपने सुनी हुई है, अंजनी सूत नाम है उनका, फिर भी हम आपके साथ कुछ हनुमान से रिलेटेड कुछ कथा है आपको, मैं आपको सुनना चाहता था, क्योंकि हम किसी एक ही एपिसोड को ले सकते हैं। तो मैं सोचा था आज हनुमान के एपिसोड को लेते हैं, वी टॉक अबाउट हनुमान टुडे। हनुमान जी दास्य भक्ति के प्रतीक है, नवदा भक्ति जो है उसमें श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम वगैरह नौ प्रकार की जो भक्ति है उसमें दास्य भक्ति जो है वो है हनुमान, सोचिए। और वो चिरंजीव है, अमर कहा जाता है उनको। आज भी हनुमान किसी स्थान पे, शायद हिमालय में कहीं पर तपस्या कर रहे होंगे या रामचंद्र की उपासना कर रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। और हनुमान जी द्वापर युग में प्रकट हुए, त्रेता युग में प्रकट हुए थे, द्वापर युग में भी एक बार दर्शन दिया था पांडवों को, है ना, भीम को दर्शन दिया था, भीम को बताया था कि मैं तुम्हारी ओर से, यू नो, मैं जब चिल्लाऊंगा तुम बोलना तो मेरा आवाज़ ज्वाइन कर दूंगा, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आएगी। भीम के पास ये वरदान था कि उनको इनबिल्ट, यू नो, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक साउंड सिस्टम दिया गया था उनके रथ में साउंड सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट था, कि ज़ोर से कुछ बोले, भीम कुछ भी बोले पूरे युद्ध में तो सारी कुरुक्षेत्र की भूमि में सुनाई देगा, सारी कुरुक्षेत्र की भूमि में। हाँ, हनुमान जी का चिट था वो इंस्टॉल किया था उनके बॉडी में आशीर्वाद हनुमान जी का। मिस युधिष्ठिर ने भी ऐसा किया था एक बार, युधिष्ठिर को कुछ कह मैसेज दिलवाना था युद्ध हुए में, तो हनुमान को कहा, हनुमान तुम बोलो, तुम्हारा आवाज बड़ा है, आई मीन ये भीम को बोला, भीम को बोला, भीम तुम बोलो, तुम्हारा आवाज बड़ा है। तो फिर भीम एक गर्जना कर रहे तो सैनिक भी हिल जाते थे, इतना बड़ा आवाज भीम का था, क्योंकि भीम वायुदेव के पुत्र है। कुंती महारानी ने वायुदेव का आह्वान करके भीम को जन्म दिया था और वही वायुदेव के पुत्र थे हनुमान। तो हनुमान जी जो है वो बड़े भाई होते और भीम जो होते छोटे भाई होते, तो छोटे भाई को अलग से अलकनंदा नदी के पास भीम को दर्शन दिया था हनुमान जी ने। अलकनंदा पता है आपको कहाँ पर है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ जाएंगे ना आप, उसके पास में अलकनंदा नदी है, आई थिंक यहाँ पर जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो अलकनंदा में था, बद्रीनाथ के पास, है ना, अलकनंदा। सो इस अलकनंदा के तट पे हनुमान जी बैठे थे और वहाँ पर भीम ने बातचीत हुई और आशीर्वाद दिया, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। तो ये एक्चुअली हनुमान जी जो है वो वायुदेव के अवतार हैं और शिव जी के अंश हैं। जब सारे देवता रामचंद्र की सेवा करना चाहते थे तो उन्होंने शिव जी ने सोचा कि मैं भी तो कुछ सेवा रामचंद्र की सेवा करूं। और ऐसा माना जाता है कि शिव जी को रामचंद्र बहुत प्रिय है, वो भक्त है, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे महादेव राम राम हरे, तो रामचंद्र की उपासना करते रहते। इसलिए राम जिनके ईश्वर है उनका नाम है रामेश्वर, लेकिन लोग आज अलग मानते हैं, लोग ऐसा मानते हैं राम के जो ईश्वर है वो है रामेश्वर, लेकिन एक्चुअली रामेश्वर का अर्थ है कि राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर शिव। तो वहाँ शिवलिंग है वहाँ पर रामचंद्र का, वहाँ पर रामचंद्र ने पूजा किया था, अभिषेक किया था शिव जी का। तो ये संक्षिप्त में बताऊंगा कि ये किस तरह से जन्म हुआ हनुमान जी का, लॉन्ग स्टोरी। शिव जी एक बार ऐसा हुआ था कि शिव जी और पार्वती पति पत्नी के रूप में एक बार कुछ क्रीड़ाएँ कर रहे थे, मतलब कैलाश धाम में मूविंग एंड प्लेइंग समथिंग, क्रीड़ाएँ कर रहे थे, और अचानक से वो उस प्रकार के फन के मूड में थे, और अचानक से उन्होंने कुछ बंदर को देखा शिव पार्वती ने। जैसे उन्होंने बंदर को देखा तो शिव जी ने सोचा कि मैं एक बंदर का स्वरूप लेता हूँ, और पार्वती को बंदर स्त्री बंदरी का स्वरूप बन दिलवाया, और इस तरह से वो लोग क्रीड़ा करना चाहते थे कि इधर उधर जंप करेंगे, क्रीड़ा करेंगे इत्यादि, और इंद्रिय भोग भी करेंगे ऐसे। तो उन्होंने बंदर के रूप में इंद्रिय भोग किया शिव पार्वती ने, और शिव जी ने बंदर के रूप में ही गर्भ दे दिया पार्वती को, है ना। फिर शिव जी तो अपने मूल रूप में आ गए, पार्वती भी अपने मूल रूप में आ गई, लेकिन पार्वती ने कहा कि आपने मुझे गर्भ दिया, मैं किसी बंदर को जन्म नहीं देने वाली, मैं किसी बंदर को जन्म नहीं दूंगी, एक तो हाथी है मेरे घर में तो क्या पूरी डिज्नीलैंड खोलने की क्या लोग कहेंगे पर एक हाथी बन गया, एक बंदर बन गए तो सो पार्वती ने बोल दिया ऐसे कि मैं बंदर को जन्म नहीं दूंगी। तो शिवजी ने कहा लेकिन ये व्यर्थ तो जा ही नहीं सकता, शिव जी का जो बीज है वो व्यर्थ नहीं जा सकता, जन्म तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो बोले तुमने मुझे गर्भ दिया था जब तुम बंदर थे, बंदर के रूप में, इसलिए जो भी बालक जन्म होगा वो बंदर होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर भी तुम्हें जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि ये शिव, आपको पता है शिव जी का जो शक्ति है वो शक्ति इतना स्ट्रांग है कि जहाँ पर वो धरती पर एक बार गिरा था, शिव जी की ये शक्ति, शिव जी का जो वीर्य है, वो एक बार जैसे गिरा धरती पर तो वहाँ पर ये सोने की खान बन गई, सोने की खान, फिर चांदी की खान, जो आज जहाँ पर देखते हैं ना माइंस, गोल्ड माइंस, सिल्वर माइंस, तो वो सब वो स्थान है जहाँ पर शिव जी के वीर्य के बूंद गिरे थे। अब सोचो कितना स्ट्रांग शिव जी का वीर्य है। जब मोहिनी को स्पर्श करना चाहते थे शिव जी, उस समय ये बूंद गिरे थे पृथ्वी पर, तो इतना देखो कितने शक्तिशाली शिव जी के। ये शिव जी ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि तुम्हें जन्म तो देना ही पड़ेगा। तो फिर शिव जी पार्वती ने ऐसा कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले मेरा पुत्र हो, लेकिन मैं मेरे गर्भ में नहीं रखूंगी इसको, मुझे बंदर नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म तो बंदर ही होगा इसका, लेकिन तुम इसका अरेंजमेंट कुछ करो, कहीं और जगह रखो, मेरे गर्भ में मत रखो, कैसा होगा फिर, बंदर की माँ होगी पार्वती, तो आई डोंट वांट दैट। तो शिव जी ने वो बात को स्वीकार कर ली, ठीक है ये बात तुम्हारी सही है कि मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो उन्होंने सीधे ही पहले वायुदेव को फ़ोन लगाया, आई मीन टू से वायुदेव को बुलाया, वायुदेव को कहा कि मैं एक बार, बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा इस तरह से गर्भ था, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, और मैंने अग्निदेव को दिया था, है ना। तो अग्निदेव तो ये नहीं करेगा फिर से अब, क्योंकि अग्निदेव अग्नि थे, लेकिन शिव जी का जो बीज था वो इतना गर्म था कि अग्निदेव को जलन हो रही थी, अग्निदेव उसको छूते जल जाते थे। अब जानते हो अग्नि को छू के लोग जलते हैं, और ये अग्निदेव शिव जी के शक्ति को छू के जल जाते थे, शिव जी के बीज को छू। अग्निदेव ने बोला सॉरी, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अब मैं फिर से ये काम नहीं करूँगा। तो वायु को कहा आप कीजिए, वायु को शिव जी ने कहा वायुदेव आपने आज तक कुछ किया नहीं मेरे लिए, ये कर लो मेरा काम, ये गर्भ रखो अपने पास, ये बीज को रखो। तो वायुदेव ने कहा कि आपका शक्ति बीज जो है वो आप भी जानते हो, समस्त देवगण भी जानते हैं कि वो कितना शक्तिशाली, कितना उग्र है। शिवजी तो प्रलय के देवता है ना, आप सोचो कि उनका शक्ति या बीज कितना उग्र होगा, तो कितना उग्र है। अगर और मेरा नाम है वायु, वायु का काम है सबको ठंडा करना, और मैं इसको लेके घूमूंगा सब जगह, तो सारी जगह पर गर्म हवा फैल जाएगी सारे संसार में, तो ये तो संसार के लिए उचित नहीं होगा। तो फिर शिवजी ने कहा यस तुम्हारी बात तो सही है, कुछ अरेंजमेंट तुम कर दो, आप कुछ ढूंढ के लाओ, कुछ प्रयास करो, कुछ सॉल्यूशन, ये समस्या तुम्हें दिया, अब इसका हल तुम करो। तो वायुदेव ने सोचा ठीक है मैं सप्तर्षियों को बुलाता हूँ। तो सप्तर्षियों को बुलाया और सप्तर्षि को कहा कि ये शिवजी का शक्ति है, इस शिवजी की शक्ति को तुम संभालो, या फिर तुम इसका कुछ अरेंजमेंट करो, डू समथिंग, इसके साथ कुछ करो। लेकिन इन लोगों ने कहा कि इसका हमें कब तक इसको संभालना है, क्योंकि कोई भी बीज जो होता है उसको आश्रय तो चाहिए ना, बिना आश्रय के वो कैसे रहेगा। बीज जैसे ही गर्भ में से बाहर निकाल लो तो उससे कोई बालक का जन्म नहीं होने वाला, तो जब तक उसको किसी माता के गर्भ में वापस नहीं रखा जाए तब तक वो भी ऐसा का वैसे ही रहेगा। तो वायुदेव ने कहा कि इस बीज को रखो जब तक रामचंद्र का जन्म न हो। बात हुई थी सतयुग में और रामचंद्र त्रेता में, एक युग तक आपको इस बीज को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो सप्तर्षि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया उस बीज को लेकर के, और वहाँ पर मंदाकिनी का मुख है, मंदाकिनी नदी का मुख है, मुख मीन्स का यहाँ से उद्भव होता है, तो मंदाकिनी का मुख है। वहाँ पर एक मेटल का बना हुआ, धातु का बना हुआ एक पत्र पत्ता, वो उन्होंने निकाला वहाँ से, उठाया, धातु का बना हुआ पत्र, लीव पत्ता, और उसके ऊपर इस बीज को सेफली रख दिया। और वायुदेव को ये सूचना दी गई कि आपको कुछ कुछ समय पे यहाँ पर आते आना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये बीज सही सलामत है कि नहीं, ये आपको बार बार देखने आना पड़ेगा। तो ये सारी एक्सरसाइज एक इतना जब तक रामचंद्र प्रकट नहीं हुए तब तक ये सब चलता रहा। सो बाद में एक कई सालों के बाद एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, बृहस्पति के घर में एक नौकरानी या मेड चाकर सेविका वो काम करती थी, और उनका काम ये था कि बाहर जाके बगीचे में से जो गार्डन होता है पार्क में वहाँ से फूल इकट्ठा करना ताकि बृहस्पति शालिग्राम की सेवा करे, पूजा कर पाए। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं तो स्वर्ग में रहते सब, तो वो जो दासी थी वो गई फूल चुनने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया गंधर्वों के बीच में कि वो लोग इंद्रिय भोग कर रहे थे, ऐसा दृश्य देख लिया। तो उनके मन में ये भावना बड़ी तीव्र हो गई और वो इतनी अंध हो गई कि सब कुछ भूल गई कि वो कौन है, उसको क्या करना चाहिए, फूल चुनने आई थी वो भी भूल गई, सब कुछ भूल गई, इतनी अंध हो गई। तो उन्होंने बिना फूल चुने कुछ किए बिना ही बृहस्पति के पास गई, और ये भी भूल गए कि ये तो तुम्हारा इज़ नॉट हस्बैंड, लेकिन ये तुम्हारा मालिक है, तुम उनकी दासी हो, तुम्हारा भी अपना भी एक लिमिट होता है, सीमा भूल गई सब। और उन्होंने सीधा आक्रमण किया बृहस्पति के ऊपर, और जैसे ही बृहस्पति पर आक्रमण, तो बृहस्पति एकदम चौंक गए, बृहस्पति पूजा में व्यस्त थे, वो मृग चर्म की सेवा, मृग चर्म का आसन बना के बैठे थे पूजा के लिए, और अचानक से यह दासी इस तरह से आक्रमण किया और यू नो अपना प्रेम बताना चाहती थी तो काम से अंदर हुआ, तो बृहस्पति एकदम सोचने लगे और व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो यू नो, और कहा कि तुम्हारा आचरण बिल्कुल एक बंदर को बंदर जैसा है तुम्हारा आचरण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जाओ गिरो बंदरी बन के, आई कर्स यू, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बंदरी बन जाओ और गिरो पृथ्वी पर। तो तुरंत तो उसको भान आ गया, तो बाद में वो प्रार्थना करने लगी, क्षमा याचना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आप मेरी गलती मैंने स्वीकार कर ली है, आप ऐसा श्राप मत दीजिए, या चलो ये बता दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, या मैं कैसे ऐसी अवस्था में श्राप में से मुक्त कैसे हो सकते हो। तो फिर बृहस्पति ने सोचा कि मैंने तुम्हें क्या ऐसा श्राप दिया कि तुम बंदरी बन जाओ, लेकिन मैं तो क्रोध में था नहीं, मैंने ऐसा श्राप कैसे दे दिया तुम्हें। फिर उन्होंने अपनी शक्ति योग शक्ति से उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, ऐसा मैंने क्यों किया। फिर उन्होंने सोचा कि ओके आपके लिए कोई सुविधा दी गई, एक बहुत बड़ी अरेंजमेंट की गई है तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और इसलिए उनको कहा गया कि तुम बन जाओ अंजना और एक बंदर के घर में तुम्हारा जन्म होगा। तो किष्किंधा में तुम एक महान राजा की यू नो पत्नी बनोगी, खेतरी केसरी, खेतरी भी बोलते हैं केसरी, तो उनका केसरी समझ लो, केसरी नाम के एक महान राजा उनकी तुम पत्नी बनोगी, वो किष्किंधा के राजा है। तो वहाँ पर वो पत्नी किस वहाँ पर बनी और क्या नाम केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद ये पूरा उनको बता दिया ये सारी चीज कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा और तुम्हारा उद्धार होगा। तो उस समय केसरी जो है तो बंदर ही है, तो वो अपने भोजन की तलाश के लिए किष्किंधा के जंगलों में पेड़ों को ऊपर कूदते कूदते फल चुन रहे थे, एक पेड़ में से फल लिया फिर दूसरे पेड़ में गया उसे पेड़ में से, तो ऐसे फल चुनते चुनते एक बार एक पेड़ में से दूसरे पेड़ पे गए तो एक पेड़ पर एक सुंदर कन्या थी अंजना, ये और दैव योग से ऐसा अरेंजमेंट दैव के द्वारा था कि उन्होंने बड़ी सुंदर थी तो उन्होंने कुछ बातचीत की और ऑटोमेटिक बिकॉज इट वॉज प्रकृति के द्वारा निर्धारित था तो इसलिए उन दोनों का विवाह हुआ और केसरी और अंजना वो दोनों यू नो विवाहित होके कई समय तक यू नो उनकी बड़ी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि उनको संतान प्राप्ति हो, लेकिन संतान होता ही नहीं था, बड़ी प्रयास किया उन्होंने लेकिन वो होता ही नहीं था कभी भी। तो केसरी ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी, उनके मन में ये भाव ये इच्छा थी केसरी के मन में कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए कि वो बहुत शक्तिशाली हो, और जब वो इस तरह से ध्यान में मग्न थे उसी समय वायुदेव वहाँ पर आए, और जब वायुदेव वहाँ पर आए तो वायुदेव को तो पता था, उनको तो इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको इनके गर्भ में बालक ये बीज शिव जी का छोड़ने का, ये इंस्ट्रक्शन दिया था वायुदेव को। तो वायुदेव वहाँ पर आए और वायुदेव वहाँ पर आकर उन्होंने अदृश्य रूप में आए और कैसे भी करके उन्होंने अंजना को अदृश्य रूप में पकड़ लिया और उनको बीज दे दिया। तो वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि वायुदेव आकर के वायु के रूप में ही आए थे, पवन के रूप में, और पवन के रूप में आके उन्होंने अंजना को बीज दिया ऐसे। तो जैसे क्योंकि अंजना को जैसे ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने उसको पकड़ के रखा है। तो फिर अंजना ने कहा, और पता भी पड़ गया कि ये मुझे बीज दे रहा है, तो उन्होंने अंजना ने तुरंत बोल दिया कि जो भी है मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी कि आप ऐसे मुझे स्पर्श कैसे कर रहे हो। तो शाप की जैसी बात हुई तो वायुदेव प्रकट हुए उनके सामने, और वायुदेव ने उनको कहा कि आप मुझे क्यों कर्ज देना चाहते हो, आप मुझे शाप क्यों देना चाहते हो, क्या आप भूल गए हो कि आपको एक शाप मिला है। फिर उन्होंने ये शाप बताया उनको कि ये शाप का शाप कब ख़त्म होगा, जब आप एक महान पुत्र को जन्म दोगे तब ये शाप आपका पूरा होगा। तो वो महान पुत्र का जो बीज है, जो सीड है, जो शक्ति है, वो दान बीज है, गर्भ है, वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। मैं ये दूंगा तब तुम्हारा शाप का नाश होगा, तब तुम जाके स्वर्ग में जा पाओगे। तो क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या स्वर्ग में जाना चाहती हो। तो उनको सारी पूर्वजन्म की सारी स्मृति होने लगी, सब याद आने लगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने बीज प्राप्त किया और फिर वहाँ पर जन्म हुआ शिव जी के अंश का, जिसका यू नो उनका नाम उस समय था तो केसरी नंदन ऐसे। और जैसे जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के साथ ही वो 16 साल के बन गए थे नेक्स्ट डे, ऐसा मैंने सुना है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ दूसरे दिन 16 साल के बन गए, ऐसे हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, या फिर उसी समय 16 साल के बन गए, जैसे ही गर्भ में से बाहर आए तुरंत 16 साल के। और इनका तो शाप ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने यू नो अंजना ने टाटा गुड बाय बोल के, चलो बेटा मैं जाती हूँ, स्वर्ग में विमान आ गया, स्वर्ग में जाना है। तो हनुमान जी ने उनको रोका, हनुमान ने कहा कि माता जी आपने मुझे जन्म दिया तो लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जन्म लेने के साथ बच्चा भूखा होता है, तो आप मुझे भोजन या कुछ दिए बिना कैसे जा सकते हो। तो अंजना ने कहा कि क्या करूं तुम्हारे भोजन के लिए, संध्या का समय था, तो उन्होंने ऐसे सोचा क्या करें। तो उस समय उन्होंने देखा कि आकाश में सूर्य चमक रहा था और सूर्य ऑरेंज हो गया था। तो उन्होंने कहा कि देखो वो जो सूर्य तुम्हें, जो कोई भी चीज सूर्य जैसा रंग का मिल जाए, जो फ्रूट वगैरह कुछ भी, उसको उठा के खा लेना, ऐसा बोल के चले गए। तो हनुमान जी सोचने लगे ऐसा उठा के खा लेना, ओके। फिर वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या इस कलर के यू नो फ्रूट ढूंढने जाऊंगा कि कहाँ पर ये फ्रूट है, क्या है, वो कहाँ ढूंढने जाऊंगा, इतनी ज़ोरों से भूख लगी है तो मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, पहले इसी से ही शुरुआत करें ये सूर्य को ही खा लेते पहले। तो आगे बढ़े सूर्य की ओर, और सूर्य की ओर आगे बढ़े, सूर्यदेव तो अपनी गति में थे, सूर्यदेव तो निश्चिंत थे, सूर्य ने देखा कोई उनकी ओर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हाथ लंबा 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 हाथ आ रहा है ऐसे। तो सूर्यदेव सोच में पड़ गए ये क्या हो रहा है ये सब, बोले राहु तो जानता था मैं, ये कौन सा नया राहु है, राहु आता है कभी कभी लेकिन राहु ऐसे चिल्लाता है मैं तुम्हें निकल जाऊंगा, लेकिन होता नहीं कुछ, आधा ही निकल सकता है, पूरा नहीं निकलता राहु, और वो भी चला जाता है बाद में, वो हार जाता है हमेशा, राहु दैत्य में आता है। तो वो आता है कभी कभी, ये तो कोई तीसरा ही आ गया, और ये भी विदाउट एनी नोटिस, यू नो नारद मुनि ने भी आके बताया नहीं कि कोई ऐसा आएगा, नहीं तो नारद मुनि आके बता देते कि कोई आता है ऐसा आएगा, कोई बताया नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो डर गए सूर्यदेव, और हनुमान ने तो आके सूर्यदेव को ऐसे करके छोटा बना दिया और डाल दिया मुंह के अंदर। हनुमान जी ने शिव जी का अंश है देखो, सूर्यदेव को मुंह में डाल दिया, सुदर्शन चक्र को भी डाल दिया था मुंह में ऐसे। सुदर्शन चक्र कितना विशाल है पता है? सुदर्शन चक्र उसका तेज सूर्य भी सहन नहीं कर पाए, इतना तेज सुदर्शन चक्र का। करोड़ों सूर्य अगर इकट्ठा हो जाए, इसे उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन मीन्स जिससे दर्शन स्वच्छ होता है, अच्छा दर्शन होता है, इतना प्रकाश होता है, वो पूर्ण रूप से ज्ञानमय होता है। और भगवान का अस्त्र है इसलिए क्योंकि वो अंधकार को नष्ट करता है, और अंधकार और अज्ञान दोनों समानार्थी है। जिसके पास सुदर्शन की कृपा होती है वो अज्ञान से बच जाता है, इसलिए जगन्नाथ जी के पास सुदर्शन रखा जाता है। तो उसकी कथा में भी ऐसा ही है, सुदर्शन की कथा में, कि सुदर्शन ये चक्र में से स्टिक कैसे बन गया था, तो उसकी कथा में ऐसा ही है कि सुदर्शन एक बार भगवान के जगन्नाथ जी के पास रहता था पुरी में, और बड़ा अभिमान था उसको, सुदर्शन को अभिमान हो गया था, मैं भगवान का अस्त्र हूँ, भगवान की शक्ति हूँ। सोचो जिस संसार की रक्षा विष्णु करते हैं और उनकी रक्षा मैं करता हूँ, मैं सुदर्शन। तो विष्णु को ये चीज़ पसंद नहीं थी, जगन्नाथ जी को थोड़ा सा भी, भक्तों का थोड़ा सा भी अभिमान जो होता है ना पसंद नहीं है। इसलिए और हम तो इतने डीप रूटेड है अंधकार में, हमारी समस्या क्या है कि हम हर एक छोटी सेवा का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम कुछ करेंगे तो हमें कोई ऐसा मिलना चाहिए जो हमें कहे क्या बात है, हमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये अहंकार बड़ा ही खतरनाक होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ईर्ष्या कितनी भयानक है। तो ये अहंकार जो वो ईर्ष्या से जन्म लेता है, मैं महान हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तुमसे तो अच्छा ही हूँ, ऐसे भले कुछ भी हो, मैं दासा हूँ, दास तुम्हारी हूँ, लेकिन तुमसे तो अच्छा हूँ, है ना। ये भावना ये अहंकार के वश होता है। कई ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म अहंकार हमारे हृदय में भरा पड़ा होता है कि हम अगर हम कुछ चीज कहते हैं तो वही सत्य होना चाहिए और वही शास्त्र का वाक्य है, चाहे अगर हम यू नो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग दिस टेंडेंसी, मैं जो कहूँगा वही सत्य है, फिर आप कुछ भी बोलो, शास्त्र दिखा दो, प्रमाण दिखा दो, लेकिन वो सत्य को असत्य मानने को तैयार ही नहीं, तो वो भी अहंकार है। तो अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं, जिसमें जब भी इस प्रकार के अहंकार का थोड़ा सा बूंद भी किसी भक्त में मिलता है तभी भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, और हमारा जो सागर भरा पड़ा हुआ है अहंकार का, है ना। तो हमें इस अहंकार से बचना चाहिए, निकलना चाहिए। अर्जुन के भीम को अहंकार था, अर्जुन को अहंकार था, ऐसी सारी कथाएँ बताई गई। भीम का अहंकार हनुमान ने दूर किया था, भीम को ऐसा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझसे कोई बलवान नहीं है। तो हनुमान ने कहा मेरी पूँछ तो उठा के दिखा, थोड़ी सी पूँछ उठा दे बस, दो एक इंच दो इंच थोड़ा सा पूँछ उठा दे बस। तो भीम बोले क्या बात करते हो, मैं क्षत्रिय हूँ, ये हुआ है, ए बंदर हट यहाँ से। तो भीम हनुमान ने बोला कि भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे तो हरे हिला नहीं जाता, अगर तुम्हें तुम मुझसे कूद के चले जाओ मुझ पर, तो भले मैं कैसा भी हूँ मुझे जान धर्म से विरुद्ध नहीं जाऊँगा, तो मेरे रास्ते से हटो, तो भले पूँछ हटा दो बस, मुझे नहीं हटा तो कुछ नहीं, मेरी पूँछ हटा दो फिर चले जाओ। तो भीम से पूँछ नहीं हटी, तो हनुमान जी ने उसका अहंकार तोड़ दिया भीम का। तो इस तरह से शिव ये सुदर्शन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ा था। सुदर्शन को कहाँ भगवान ये जगन्नाथ जी ने बनवाया ऐसा लीला, जगन्नाथ जी ने सुदर्शन को कहा कि जाओ मैं हनुमान को मिलना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा भक्त है, बहुत तीव्र भक्त है, बड़ा शुद्ध भक्त है, और मुझे वो बहुत पसंद है, और बिल्कुल द्वेष ईर्ष्या अहंकार कुछ नहीं उसके अंदर, बड़ा सुदर्शन से सहन नहीं हो रहा था। मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, सुदर्शन भगवान का इतना अच्छा भक्त हूँ, ये कौन आ गया, इसको क्यों इतना सम्मान दिया जा रहा है। वो सहन नहीं कर पाए। जब वो सहन नहीं कर पाए तो फिर भी प्रभु का आदेश था, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी की बात है ये, तो जगन्नाथपुरी में आदेश था, तो गए हनुमान जी की तलाश करने के लिए हिमालय की ओर। आई थिंक वो हिमालय, आई थिंक ही वॉज इन हिमालय, हिमालय में थे, हिमालय की ओर गए। हिमालय की ओर जाके जगन्नाथ हनुमान को कहा हनुमान जी, तो बोले जगन्नाथ जी आपको मिलना चाहते। तो उनको थोड़ा मन में वो द्वेष था कि ठीक है अभी वो कौन ये भगवान के भक्त हो गए बहुत बड़े, ठीक है अभी ऐसा होता है ना कई बार भक्तों के मन में ऐसा होता है, सहन नहीं होता है, इसको इसको सम्मान क्यों दे रहे हो, नहीं 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 ये सब गलत है, सब गलत है, सब झूठा है, यूजलेस, चले जाते हैं, जगह स्थान छोड़ के चले जाओ, जगह छोड़ के चले जाओ, इसको सम्मान क्यों दिया जा रहा है बापू यहाँ से। तो वो भी ऐसे बोल दिया आपको बुला रहे ऐसा करके चले जाएंगे, तो चले गए। हनुमान जी बोले मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी पहुँचे, उससे पहले सुदर्शन पहुँच गए जगन्नाथ जी के पास मंदिर में, ये नीला ये सिंह द्वार जो है मेन द्वार, वहाँ पर पहले आ गए। तो देखा ना आपने जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो वहाँ पहुँच गए। तो हनुमान जी वहाँ पर आए तो देखा दरवाज़ा ब्लॉक, सिंह द्वार ब्लॉक कर दिया था। सुदर्शन वहाँ पर बड़े जोर से घूम रहे थे, कैसे जाए अंदर। हनुमान ने सोचा ठीक है, हनुमान ने सोचा कि ठीक है मैं बाजू वाले अश्व द्वार से जाता हूँ। अश्व द्वार में गए तो वहाँ पर भी आ गए सुदर्शन जी, क्या करोगे नहीं जाना, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक कर दिया। पीछे के द्वार पे गए, हस्ती द्वार गए, अश्व द्वार हस्ती द्वार व्याघ्र द्वार, पीछे व्याघ्र द्वार में गए, व्याघ्र द्वार में भी ब्लॉक करके रखा था नहीं जाना। चारों द्वार पहुँच गए, सब जगह ब्लॉक। तो सोचे कैसे मैं प्रभु मुझे वेट करेंगे, अच्छी बात नहीं है मेरे लिए वेट करना। तो भगवान यहाँ पर जगन्नाथ जी मंदिर सोचने लगे कि हनुमान जी आना चाहिए, अभी तक आया क्यों नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो तो सही। तो उन्होंने अपनी शक्ति से देखा था ये सुदर्शन परेशान कर रहे। तो भगवान ने हनुमान जी के चार हाथ बना दिए, चतुर्भुज, चार हाथ बना दिए, चारों हाथ में चक्र, चारों के चारों हाथ में चक्र डलवा दिए बड़े बड़े, यू नो उससे भी तेजस्वी। और फिर और चार हाथ और दो उनके अपने छह हाथ। तो बाद में हनुमान जी ने क्या किया, वो सुदर्शन को यू नो सुदर्शन की यू नो ऐसा भी कहा जाता है कहीं जगह पर कि सुदर्शन को मुंह में डाल दिया था, पकड़ के गया मुंह में, बोले तू क्या रोकेगा मुझे, पकड़ के मुंह में डाल दिया। और फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी के सामने फिर दोनों प्रकट हुए, सुदर्शन भी प्रकट हुए, वह भी प्रकट हुए। लेकिन हनुमान अंदर पहुँच गए सुदर्शन को हटा करके। तो फिर सुदर्शन आया, डर गया, अब तो पता पड़ गया सब कुछ कि ये तो कोई बहुत बड़ा भक्त है, मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने हनुमान को परेशान किया, ये गलत है, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने चक्र बनने पर, है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चक्र के रूप में नहीं रहोगे, तुम चले जाओ, मैं मुझसे दूर हो जाओ, मत रहो मेरे साथ, तुम चक्र के बदले लकड़ी बन जाओ, स्टिक, चक्र नहीं स्टिक बन जाओ, स्टिक बन के रहना दो। तो वो स्टिक बन के रहेगा एक लकड़ी के रूप में, तो जगन्नाथ जी के बाजू में एक लकड़ी के रूप में वहाँ पर मेरे। फिर भी कहा कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो बहुत किया। तो बोले ठीक है, और एक वरदान देता हूँ कि तुम मेरे मंदिर के शिखर पर नील चक्र के रूप में, चक्र के रूप में रह सकते हो। और ये वरदान होगा कि जो कोई तुम्हें दर्शन करेगा नील चक्र का, उसको यही फल प्राप्त होगा जो मेरे दर्शन से फल प्राप्त होता है, सेम परिणाम प्राप्त होगा। तो इस तरह से सुदर्शन का उन्होंने, क्योंकि ऐसे जगन्नाथ जी और हनुमान जी का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो और हनुमान जी ऐसा ही, बिकॉज बात निकली जगन्नाथ जी का, तो मैं वो बता देता हूँ कि हनुमान जी को बताया था, जब समुद्र जगन्नाथ जी सो रहे थे और वो समुंदर की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे आवाज़ आती रहती है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी परेशान हो गए, हले हालांकि जमाई है या वो ससुर है, समुंदर ससुर होता है और जगन्नाथ जी जमाई होते। तो जगन्नाथ ने कहा, ओए समुंदर को कहा, बहुत आवाज़ आ रही है तुम्हारी, रात को सोने नहीं देते आप, आवाज़ मत करो, डोंट मेक एनी साउंड। तो आवाज़ बंद हो गई तब से। तो सकान वाले हनुमान जी को बिठा दिया, बैठो इधर समुद्र के तट पे, कान धर के रखो, आवाज़ आए तो बोल देना मुझे, समुद्र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो हनुमान जी ऐसे कान पकड़ के बैठे हुए वहाँ पर, है बड़ा मंदिर है वहाँ पर अभी भी है। ऐसे कई ऐसा है जगन्नाथ मंदिर के कई ऐसे लक्षण है कि जगन्नाथ मंदिर आप कहीं से भी देखो आपको चक्र एक ही सीधा ही दर्शन देगा, चक्र जगन्नाथ मंदिर का ये है। और दूसरा ये है कि जगन्नाथ मंदिर का जो शिखर है उसका छाया कहीं पर नहीं आता है, शैडो होता ही नहीं कभी, उसकी छाया कहीं पर जाती नहीं है। ऐसे सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन वो शिखर का छाया कहीं पर नहीं होगा, उसकी छाया नहीं आती शिखर की। फिर ऐसा है कि आप शाम के समय में समुद्र का आवाज़ आती है, रात को भी आप जाओ, लेकिन मंदिर के अंदर एक स्टेप भी अंदर हो तो समुद्र की आवाज़ बंद, एक स्टेप बाहर आओ तो मंदिर आवाज़ शुरू। ऐसे सिंह द्वार के पास खड़े रहो, आपको सुनाई देगा समुद्र का आवाज़, शांत वातावरण। आप एक कदम अंदर चले जाओ तो आवाज़ बंद हो जाएगी, एक कदम बाहर आ जाओ तो आवाज़ शुरू। ऐसे बहुत सारे ऐसे जगन्नाथ मंदिर के ऐसे लक्षण है। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि समुद्र का बाढ़ आ गया था, समुद्र का पानी घुस गया था जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी, हाउ डेयर यू कैन कम लाइक दिस, आप कैसे इस तरह से जगन्नाथपुरी में अंदर आ सकते हो अंदर, यू नो ये जगन्नाथ जी का धाम है। हनुमान जी को कहा कि समुद्र को पहले आदेश दे दिया, तुम अपनी सीमा के बाहर नहीं आओगे, अंदर नहीं आओगे, इस पुरी में नहीं आना कभी। हनुमान जी को बैठा, इधर बैठो, यू नो इनको पकड़, इनको ध्यान रखो, भागना जाए, ये इधर अंदर नहीं आना चाहिए। तो अंदर नहीं आने की बात हुई, तो एक बार वैसा हुआ कि कहीं पर रामचंद्र का गुणगान हो रहा था, तो हनुमान जी वो जगह छोड़ करके चले गए रामचंद्र की गुणगान सुनने के लिए, यू नो। तो उनको तो क्या सेवा दिया गया था, समुद्र को रोक के रखो। तो हनुमान सोचे कि अभी रोज थोड़ी ना आता है, वो तो अपनी सीमा में ही रहता है, यू नो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चला भी जाए गया, कुछ दो चार राम कथा सुन लिया और फिर वापस आ गया, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या देखने वाला, कौन देखने वाला, जगन्नाथ जी को कहाँ पता चलेगा क्या देखने वाला। लेकिन जैसे हनुमान जी गए, जगन्नाथ जी ने उसको पकड़ कर वापस उठा दिया, बैठ इधर, हनुमान जी ने वापस बिठा दिया। और अभी क्या क्या शैकल्स डाल दी पूरे शरीर पर, शैकल्स चेन्स बेड़ी बेड़ियाँ डाल दी, इसलिए वहाँ पर बेड़ी हनुमान है। तो हनुमान जी को वहाँ पर बंदी बना दिया, बोले तुम अभी तुम भागोगे नहीं और इसको भी नहीं आने दोगे, जैसे समुंदर को भी। तो ऐसी लीलाएँ हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ हनुमान की। तो ये हनुमान जी जैसे वो मुँह में डाल दिया, वो सूर्य देव को मुँह में डाल दिया, सूर्य को मुँह में डाल दिया, तो परिणाम ये हुआ कि दूसरी जगह पर हनुमान जी जैसे उन्होंने मुँह में डाला, इंद्र और कुछ देवताएं वो सब, कुछ मीटिंग चल रहा था उनका, है ना, बातचीत चल रही थी, और सूर्य प्रकाश था, और एकदम से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई, लाइट चली गई। वो सोचे इस स्वर्ग में इलेक्ट्रिक फेलियर इम्पॉसिबल, ये कैसे हुआ, ये तो संभव ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देवताओं को पूछा, ये सब क्या हो रहा है, तो किसने क्या, सूर्य का प्रकाश कहाँ चला गया, अग्निदेव ने कहा, अग्निदेव का प्रकाश था, अग्निदेव प्रकाश है ना अग्नि, तो उन्होंने अपने अग्नि के प्रकाश से वो मोमबत्ती तो चालू हो गई स्वर्ग में, लेकिन अग्निदेव का प्रकाश था, उससे उन्होंने कहा कि किसी ने सूर्य को किडनैप कर लिया है, सूर्य को चुरा लिया है किसी ने। तो इंद्र जो थे, व्हाट, सूर्य को क्या, ये कैसे हो सकता है? तो फिर अर्जुन अग्नि ने कहा कि आप इतना आश्चर्य क्यों करते हो, आपके पास तो शब्द भेदी है ना अस्त्र होते हैं, आप जानते हो कौन किसने क्या किया, तो वज्र ले लो वज्र। तो उन्होंने, इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वो वज्र उठा करके हनुमान की ओर, हनुमान को फेंक दिया, हनुमान की ओर फेंक दिया उन्होंने वज्र। और उसके साथ साथ वो ऐरावत के ऊपर बैठकर उस स्थान जहाँ जहाँ वज्र गया उसके पीछे पीछे गए कि कहाँ जा रहा है। तो जाके वो सीधा वज्र जो है सीधा उनके दांत पे लग गया, यू नो हनु पर। तो हनु पर जैसे उनको टच किया इधर, तो दांत जो है सब नो एकदम डिशेप हो गया उनका। फिर ये हनुमान जी जो थे वो सोचे, उनको तो भूख लगी थी, तो वो सोचे एक तो पहले लगी चोट आई तो थोड़ा नाराज भी हो, अच्छा भी नहीं लगा, गुस्सा भी हुआ। फिर देखा हाथी है ना, वाइट फ्रूट। तो ये हनुमान जी ने कहा कि ओ इतना सुंदर फ्रूट है, इसको भी खा जाते हैं चलो। वो जो वज्र जो था, वज्र हाथ में पकड़ लिया और वज्र लेकर इंद्र की ओर दौड़े हनुमान जी। बोले उसको पकड़ लेता हूँ आज, हर ऐरावत को पकड़ लेता हूँ, ऐरावत हाथी को। वो इंद्र ऐसे बड़े जोर से ऐसे कर, देखा इंद्र ने देखा हनुमान उसकी ओर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? और उन्होंने देखा कि मेरा वज्र इसके हाथ में, ये कैसे हो सकता है? फिर इंद्र ने सोचा कि मेरा वज्र कौन कौन संभाल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि उनको एक ही चीज प्राप्त हुई कि विष्णु के अलावा मेरे वज्र को एक ही व्यक्ति पकड़ सकता है और वो है इंद्र, या मैं इसको संभाल सकता हूँ या विष्णु इसको संभाल सकते हैं। अब मैं तो, मेरे हाथ में तो वज्र है नहीं, तो क्या ये विष्णु का अवतार है? ये कोई विष्णु का अवतार तो नहीं है? तो ऐसा सोचने लगे, लेकिन अभी तो कुछ सोचने का समय नहीं बचा, भागो यहाँ से, भागो। तो भागने लगे, इंद्र भी भाग गए, चुप रहना उचित समझा, यू नो। लेकिन फिर वो चुप रहकर भागते भागते वो सोचने लगे कि भगवान ने मृगा के रूप में अवतार लिया, सिंह के रूप में अवतार लिया, घोड़े के रूप में अवतार लिया, बंदर के रूप में कब अवतार लिया? ऐसा मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, बंदर के रूप में विष्णु प्रकट हुए कब हुए, याद नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन वो तो भाग गए इंद्र। और वहाँ पर उसी समय राहु भी आया था सूर्य का ग्रहण करने के लिए, तो राहु को भी पकड़ लिया हनुमान ने। तो हो गया, एक ऑरेंज मिल गई, एक एप्पल मिल गया और एक बनाना मिल गया, है ना। तो उसके पास तीन चीज़ हो गई, एक सूर्य पकड़ लिया था, राहु को पकड़ लिया था और वज्र उठा के लेके आए थे। तो ये तीन चीज उठा करके किसकिंदा है, सूर्य, राहु और वज्र, ये तीनों उठा करके किसकिंदा है। और तीनों में सबसे पहले सोचा कि वज्र को देखा, यू नो ये वॉज वेरी सिंपल। सोचने लगे कि ये वज्र को चबाने का होता है या उसको दांत से खाऊं, चबाऊं, चूसने का, ऐसे जूस आएगा, क्या होगा, ऐसा सोच रहे थे ऐसा सब। और वहाँ पर तो हल्ला मच गया था। प्रॉब्लम यह हो गई थी कि उनके मुंह में सूर्य चले गए थे और अंधकार छाया हुआ था, और वो सूर्य के बिना आप पता है कैसा अंधकार होता है ना, बड़ा भयानक अंधकार होता है सूर्य के बिना, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश वही सूर्य से आता है। अभी सूर्य ही नहीं रहेगा तो चंद्रमा भी नहीं रहेगा, तो सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, तो प्रकाश कहाँ से आएगा? तो प्रकाश बचा ही नहीं कहीं पर भी, सारे सब के सब चले गए ब्रह्मा जी के पास, इंद्र और सारे देवता। और ब्रह्मा जी को कहा कि क्या हो रहा है ये सब, आपको पता है ब्रह्मांड में उथल पाथल मची हुई है, यू नो जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है, सूर्य चला गया अंधकार हो गया। आप सोचिए ऐसा आज तक कभी हुआ है भूतकाल में? ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये शिव जी की शक्ति है, ये शिव जी का अंश है जो जिसके कारण ये सब हो रहा है। है ना? सो ब्रह्मा ने बाद में, ब्रह्मा तो बहुत लंबा जीते है ना, तो ब्रह्मा को तो पता है कि हर एक युग में हर एक लाइफ में रामचंद्र की लीला प्रकट होती है और उसमें हनुमान जी भी आते हैं, तो इनको ये सब ब्रह्मा जी को सब पता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए देवतागण, ये शिव जी की शक्ति है और रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका नाम है हनुमान। सो इस चीज समस्या से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर हनुमान के पास जाए और हनुमान को रिक्वेस्ट करे कि सूर्य को मुक्त करो। ऐसा होता है तभी ये ठीक हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो सारे कितने 33 करोड़ देवी देवता और हनुमान के साथ ब्रह्मा जी, ये सब मिलकर के किष्किंधा में सबका आगमन हुआ। सब इकट्ठा होकर किष्किंधा के पास, किष्किंधा है, सब ने हाथ जोड़ के कहा हे अंजनेय कृपा करके अपना मुख खोल दो, अपना मुख खोलो और हनुमान को थोड़ा दुखी रहे, यू नो, थोड़ा नाराज थे, गुस्सा थे कि एक तो मेरे मुंह पे तुमने वज्र छोड़ा था इंद्र को, इंद्र को देख के और ज़्यादा नाराज हुए। फिर सोचे कि अगर मैं मेरा मुंह खोलूँगा तो तुम मेरा जड़ पूरा का पूरा हनु तोड़ी फेंक दोगे, यू नो, क्या भरोसा तुम्हारा, नहीं नहीं होगा कुछ। तो फिर ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम्हें जो चाहिए हम सब देंगे, मांगो, तुम क्या चाहिए मांगो, सब दे देंगे हम, तुम मुंह खोल दो, तुम मांगो जो चाहिए हम दे देंगे। फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला, तो फिर ब्रह्मा ने आयुष्य दिया, जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक तुम जियो, इच्छा मृत्यु, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। नो रिस्पॉन्स। ब्रह्मा जी बोले क्या हो रहा है। बाद में अग्निदेव आ गया है, अग्निदेव ने कहा अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकती, भविष्य में अगर कभी ऐसा हो गया कि तुम्हें लंका को जलाना पड़े या पूंछ तुम्हारी कोई जलाए, तो अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकती, वरदान मिल गया। नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं बोले, मुंह नहीं खोला। फिर इंद्र आ गया है, इंद्र ने कहा देखो मेरा वज्र तो तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी है, मीन्स तुम किसी पर यह वज्र का प्रयोग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें क्या दूं, मैं ऐसा वरदान देता हूं कि जितना मैं प्रसिद्ध हूं इतने तुम प्रसिद्ध बन जाओगे। नो रिस्पॉन्स। फिर भी हनुमान जी ने नहीं खोला मुँह। फिर वायुदेव आए, वायुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरी गति प्राप्त करोगे, जितना तेज गति से उड़ सकता हूँ जा सकता हूँ वो गति तुम्हें मिलेगी। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा स्माइल दिया, हनुमान जी को पसंद आया, उनके पिता भी तो थे, तो उनको थोड़ा स्माइल दिया लेकिन मुँह नहीं खोला। तो सारे देवता एक एक करके आए, सब ने अपने अपने वरदान दिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वरुण देव बोले तुम्हें डुबा नहीं सकता, ये सब देवता एक एक करके वरदान देते रहे, मुंह नहीं खोला ब्रह्मा जी। सारे देवी सब ब्रह्मा जी की ओर देखना शुरू कर दिया, इंद्र और वायुदेव और सब। ऐसा भी कथा है, ऐसा मैंने सुना कि सबसे पहले तो वायुदेव को कहा था, इन सब लोगों ने हनुमान को नहीं कहा, सबसे पहले वायु को कहा था तुम्हारा बेटा है ना, तुम करो इसको उपचार, मैं तुम बोलो इसको सब मुक्त करे सूर्य को। तो वायु ने क्या कहा था, इंद्र तुमने मेरे पुत्र का हनु तोड़ दिया, जाओ मैं वायु बंद कर देता हूँ। तो वो एक समस्या हो गई थी, वायु बंद हो गई तो सारे, यू नो, सारे ब्रह्मांड में बंद स्टैच्यू बन गए सब। तो जाके वापिस ब्रह्मा जी को प्रार्थना करना पड़ा, भाई सॉरी भूख हड़ताल पे मत आओ, है ना, तुम्हारे बेटे को कोई मारेगा नहीं, इंद्रदेव सॉरी बोल दो, कोई नहीं मारेगा, डोंट वरी, है ना। तब वायुदेव जाके मार के ठीक है, तब वायु फैलने लगा। और फिर अभी यहाँ पर तो सारे देवता मिलकर भी हनुमान को संतुष्ट नहीं कर पाए, फिर ब्रह्मा सोचा अब क्या किया जाए। फिर ब्रह्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग किया कि इनका क्या उपाय, उनके माइंड में चले गए कि उनके माइंड में जाके ये सोचने लगी ये बच्चे को क्या चाहिए, हमने इतना सब दिया फिर भी कुछ उसको परिणाम नहीं, क्या चाहिए। तो उसके माइंड में जाके देखा तो क्या चाहिए था उनको, उनको फ्रूट खाना था, तो उनको फ्रूट्स चाहिए थे। उनके माइंड में यही चल रहा था कि माँ ने बोला था फ्रूट खाने के लिए, यहाँ पर फ्रूट जैसा कोई है ही नहीं, संसार में फ्रूट होता ही नहीं क्या, वो सूर्य को उठा के लेके आया तो इतनी समस्या हो गई, ये वस्त्र उठा के लेके आया हल्ला हो गया पूरा, सारे 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा जी सब आ गए, ये सब मैंने क्या गलती की भाई, मेरी क्या गलती, मैं तो भूख लगी खाने गया था, व्हाट्स रॉन्ग आई डिड, व्हाट रॉन्ग आई डिड, यू नो मेरी क्या गलती है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को बोला कि ऐसा करो कि जितने भी संसार के जितने भी फल है सब इकट्ठा करके लेके आओ, है ना, और हनुमान को दो, अंजनेय को दो। तो अंजनेय बृहस्पति आए, अंजनी को ये हनुमान जी से उनको सारे सब दे दिए फ्रूट्स, बोले ये लो सारे विश्व के फ्रूट मुंह खोलो। और उसके उसके बाद कहा कि ऐसा केवल फ्रूट ही नहीं, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान भी दूंगा, आयुर्वेद के ज्ञान से तुम्हें ये पता पड़ेगा कि हर एक फल हर एक पौधे और हर एक वृक्ष का क्या औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये ज्ञान भी मैं तुम्हें दूंगा। संसार में जितने भी पौधे अस्तित्व में है हर एक पौधे का पहचान तुम्हें होगा, यू विल बी अ वेरी गुड डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, दैट्स व्हाई मुरारी गुप्ता वाज अ डॉक्टर। इसलिए जब यही हनुमान चैतन्य लीला में प्रकट हुए थे तो उन्होंने मुरारी गुप्त का स्वरूप लिया था, और उस समय भी वो डॉक्टर बने थे, है ना, डॉक्टर मुरारी गुप्ता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो इलाज करते थे सबका। तो उनके पास ये सारी सुविधा थी, बृहस्पति ने उनको ये सारी शिक्षा दी थी, और उनके पास ऐसी भी ये सारे असरात के बाद धन्वंतरी आए उनके पास, और धन्वंतरी ने कहा कि मैं तुम्हारे आदेश के सामने खड़ा रहूँगा, जो आदेश तुम दोगे वो सब होगा। जिस मृतक व्यक्ति के ऊपर तुम अगर कोई मेडिसिन रख दोगे और कहोगे तुम जिंदा हो जाओ तो धन्वंतरी उसको जिंदा कर देंगे, ऐसा वरदान दे दिया। इतनी सारी शक्तियाँ एक ही साथ, एक केवल सूर्य को निगलने में यू नो जैकपॉट लग गया हनुमान जी को, सब प्रकार के देवताओं ने उनको वरदान दिया। एक्चुअली उनको वरदान इसलिए मिला था क्योंकि वो शिव जी के अंश थे, और कोई साधारण कोई व्यक्ति होता तो ये देवता लोग उसकी खैर नहीं छोड़ते, लेकिन शिव जी के अंश थे और इनके शक्ति के सामने देवता कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इस तरह से हनुमान जी के अनेक नाम हुए, एक तो उन्होंने हनुमान इसलिए हुआ कि हनु तोड़ दी थी, दूसरा इसलिए हुआ वज्रांग इसलिए हुआ कि उनका शरीर वज्र जैसा था। वज्रांग शब्द का दूसरा अर्थ ये होता है कि जिसके शरीर में कोई एक अंग मिसिंग है, यू नो, तो वो है हनु टूटी हुई है, इसलिए दूसरा अर्थ ही होता है वज्रांग का। फिर उनका मरुत सूत, वायुपुत्र, पवन सूत, या उनके पिता के नाम से अंजनी सूत, केसरी नंदन, ऐसे ऐसे नामों से महा जाने जाने, बाद में उनका नाम महावीर भी हुआ, महावीर हनुमान, क्योंकि उनकी बड़ी वीरता थी। तो ब्रह्मा को सब पता था कि ये प्रकट क्यों हुए हैं, उनको सब पता था। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक नेकलेस दिया, इतनी सारी वरदान उन्होंने लिया, लेकिन ये वरदान का और ये इनका जन्म का क्या उद्देश्य है, तो ये जन्म का उद्देश्य ब्रह्मा जी ने उनको सिखाया, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है, तुम रामचंद्र की सेवा करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र की सेवा करूँगा, लेकिन मैं रामचंद्र को पहचानूंगा कैसे, या तो फिर रामचंद्र मुझे कैसे पहचानेंगे, इसका कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक माला दी, मोती की माला, बोले ये पहन के रखो तुम, जो व्यक्ति इस माला को पहचान लेगा वो राम है, वो ही तुम्हारा प्रभु, वो तुम्हारा भगवान है, और उनके लिए तुम्हें जीवन समर्पण करना, तो अपने आप होगा। तो गले में वो माला लेकर हनुमान जी तो किष्किंधा में रहे, है ना, और हाँ, ब्रह्मा जी ने और ये भी कहा कि ये वरदान जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, इससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं है, क्योंकि रामचंद्र की सेवा से उत्तम कोई वरदान नहीं है। तो रामचंद्र ने जब देखा था हनुमान को, तो हनुमान को बोला, उनको पूछा ये गले में माला कौन सी है, कौन सी माला पहन के तुम घूम रही है, तो तुरंत हनुमान जी पहचान गए यही मेरे प्रभु है, और उनकी सेवा शुरू कर दी। और फिर उन्होंने सुग्रीव की सेवा में जुड़े, सुग्रीव उसकी भी हम आपको चर्चा करते हैं, सुग्रीव की। उससे पहले हम इसके पहले की एक कथा बताना चाहते हैं। इस टाइम इज गेटिंग लेट, हाँ, तो मैं बताऊंगा थोड़ा और एक दो कथा हनुमान जी की। किष्किंधा साउथ इंडिया में, नियर कर्नाटका, नियर कर्नाटका। तो ऐसा ही नहीं, लेकिन हनुमान जी ऐसे बहुत सारी, अभी तो क्या उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि सारी शक्तियां उनसे, उनके ज्ञान में से छीन लिया गया था। तो वो कैसा हुआ, ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार वो जंगल, किष्किंधा के जंगल में घूम रहे थे, तो वो वन्य पशुओं से भी खेलते थे। फिर एक बार उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं कुछ खेलूं, अब सोचो कैसे खेलते। एक हाथ से एक बाघ उसकी पूंछ पकड़ ली, दूसरे हाथ से हाथी ये पूंछ पकड़ ली, और दोनों, एक को एक हाथ में बाघ, एक हाथ में हाथी, दोनों को घुमाने लगे, है ना। और बाघ और हाथी बेचारे ऐसे 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 हनुमान ऐसे ऐसे घुमा लगे, और ऐसे जोर जोर से घुमाते घुमाते एक बार उन्होंने ऐसे घुमा रहे थे, खेल रहे थे, जस्ट लाइक खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने सामने देखा एक ऋषि का आश्रम था, और एक ऋषि का जो आश्रम था, वो आश्रम में एक ऋषि थे, वो कभी गुस्सा नहीं हुए थे आज तक, बड़े शांत जीत वाले ऋषि थे। तो सुबह के समय था ये, मॉर्निंग, यू नो, 6:30 के टाइम पे इस तरह से हनुमान खेल रहे थे। तो हनुमान ने सोचा ये कभी गुस्सा नहीं होती, ये ऋषि बड़े प्रसिद्ध है ना, चलो आज हम उनके इंद्रिय संयम का परीक्षा करते। तो उन्होंने बाघ को उठा करके फेंका ऋषि के दरवाजे के सामने, तो बाघ गिरा ऋषि के दरवाजे के सामने। वो समय पे ऋषि सुबह के समय में शौच के लिए निकल रहे थे बाहर, दरवाज़ा खोला और हाथ में लोटा लेके दरवाज़ा खोला, और जैसे दरवाज़ा खोला देखा तो बाघ दरवाज़ा बंद कर दी। और हुआ ऐसा कि वो ऋषि जो थे उनको जनरली कॉन्स्टिपेशन होता था, उनका शौच इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण, लेकिन जैसे उन्होंने बाघ देखा और सारा कॉन्स्टिपेशन नष्ट हो गया, पूरा कॉन्स्टिपेशन चला गया, और इतना भयानक प्रेशर उनको हुआ कि वो एक सेकंड के लिए भी वेट करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, सच अ बिग प्रेशर इट वाज। और दरवाजा उन्होंने लॉक नहीं किया, थोड़ा सा खुला रखा, ऐसा खुला रखकर फिर देखा ऐसे कोई है ऐसे, वो बाघ खड़ा है, तो बाघ के बने उसके बाद तो उन्होंने हाथी भी फेंक दिया था हनुमान ने। तो मैंने ऐसे बाघ देखा, फिर ऐसे थोड़ा देखा आगे, तो हाथी भी है, फिर दरवाजा वापस बंद कर दिया, दरवाजा वापस बंद कर दिया। और ऋषि ऐसा सोचने लगे कि क्या होगा, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, ये तो बाघ भी है और हाथी भी है। फिर सोचिए ऐसा अचानक कैसे हो गया, मेरे दरवाजे के बाहर ये लोग कैसे आ गए, ये कैसे कैसे हुआ। जरूर किसी ने कुछ किया है, तो खिड़की के पास गए, खिड़की के ऊपर चढ़कर खिड़की खोल के देखा कि कौन है भाई। तो देखा कि पेड़ के ऊपर हनुमान जी हंस रहे ऐसे। तो अरे दुष्ट, तूने ये सब किया है, तुझे पता है कि मेरी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है और तू मेरे साथ इस तरह से मजाक कर रहा है ना, जा मैं तुझे शाप देता हूँ। तो वो तो गुस्सा हुआ तो हनुमान को पता पड़ गया कि अभी जरूर कोई शाप देना, भागो यहाँ से, शाप देने से पहले भाग जाओ इधर से। तो भागने के लिए तैयार कर रहे थे हनुमान, भागने ही वाले थे, लेकिन जैसे वो वृक्ष के नीचे उतरे है ना, तो क्या हुआ, वो उन्होंने अपना स्वरूप एकदम छोटा बना दिया, कीड़ी मकोड़ी जैसा छोटा सा, और वो खिड़की के अंदर ही चले गए पता नहीं कहाँ छुपने के लिए। वो ऋषि के पास, लेकिन वो ऋषि ने तो श्राप तुरंत दे दिया। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी शक्तियों की मैं एक सीमा बांध देता हूँ, वो सीमा ये रहेगी कि जब तक तुम कोई याद नहीं कराएगा ना, तब तक तुम शक्ति का उपयोग नहीं करोगे, तुम्हारी शक्तियाँ सीमित हो जाएगी। तो हनुमान ने पूछा यू नो कि पहले तो हनुमान को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्तियाँ सीमित हो जाएगी, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसा श्राप क्यों दिया, हनुमान ने पूछा। तो फिर ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारे हित के लिए है, तुम जब चाहो किसी को भी परेशान करते हो इस शक्ति से, लेकिन तुम्हारी ये सारी शक्तियाँ देवताओं ने इसलिए नहीं दी कि तुम किसी को भी परेशान करो, ये शक्तियाँ तुम्हें इसलिए दी गई है कि तुम भगवान की सेवा करो, लेकिन तुम भगवान की सेवा के बदले ये सब करना शुरू कर दिया। तो यू नो जब कोई व्यक्ति आपको ये याद कराएगा तब सारी शक्तियाँ तुम्हारी याद आ जाएगी, डोंट वरी, ऐसा किया। तो फिर हनुमान ने कहा कि ठीक है, आज के बाद मैं किसी हाथी को बांधूंगा भी नहीं, शेर को उठाऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा, है ना, और मैं आपके आश्रम के सामने नहीं रखूंगा, है ना, मैं और कहीं जगह बांधना भी होगा तो और कहीं रख दूंगा, है ना, आपके सामने नहीं रखूंगा, तो क्षमा कर देना। तो ऐसा करके वो चले गए, और फिर एक हफ्ता तक हनुमान अपसेट रहे कि देखो शक्ति सारी चली गई, खेलने को नहीं मिला। केसरी सोचने लगे इसकी तबीयत तो ठीक है, उसके फादर क्या हो गया इसे। तो यू नो हनुमान केसरी ने पूछा क्या बात है, एक वीक से कोई शिकायत नहीं आई तुम्हारी, इतने अच्छे एक दिन अचानक से इतने अच्छे कैसे बन गए, ऐसा क्या हो गया। तो हनुमान ने कहा मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज के बाद किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। और इतना बात हो रहा था उठने में ही मीना का आवाज़ आने लगा, नारद मुनि आए उठने में। तो नारद मुनि वहाँ पर आए तो ये पहले आवाज़ कहाँ से आ रही, बोले ये नारद मुनि है, महान देवर्षि नारद है, ये उनको प्रणाम करो, दंडवत करो। केसरी ने भी उनको प्रणाम किया और कहा कि नारद जी मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, ऐसा कहा। सो हनुमान जी तुरंत कूद कर पहुँच गए, उनको प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा कि नारद जी मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत महान हो, तो आपको मुझे आशीर्वाद अवश्य देना पड़ेगा, और जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं आपको इधर से जाने नहीं दूंगा। नारद ने कहा कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, आपको बहुत सारे आशीर्वाद ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं, मुझे तो और कोई आशीर्वाद दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तो फिर नारद ने कहा हनुमान ये बताओ तुम्हारे पास कौन सा आशीर्वाद नहीं है अभी तक। तो फिर ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत बड़े संगीतकार बन जाओ, यू नो बिकम म्यूजिशियन, एक्सपर्ट इन म्यूजिक, संगीत में श्रेष्ठ बन जाओ, तो ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो सुगुण हनुमान जी के पास वरदान है, आपको संगीत का रुचि है तो आपको सुनना चाहिए, नारद जी से वरदान लेना चाहिए था। सो नारद वरदान देके चलने लगे तो हनुमान जी ने कहा एक सेकंड रुको रुको, एक मिनट रुको रुको। नारद जी ने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो कहा कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं एक्सपर्ट म्यूजिशियन बन गया, कैसे पता पड़ेगा? फिर हनुमान ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी एक्सपर्ट म्यूजिशियन हो, आप भी अच्छे संगीतकार हो, तो आप मुझे और एक आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? मैं आपसे भी अच्छा संगीतकार बन जाऊँ, आपसे भी अच्छा संगीतकार बनो। सो नारद ने कहा ठीक है, मैं वरदान दे दिया और इसकी परीक्षा करना है ना, ठीक है चलो मैं सुनता हूँ तुम गाओ। तो बोले नारद, हनुमान जी और नारद जी सामने सामने बैठ गए। हनुमान ने कहा कि मैं गाऊँ? बोले गाओ गाओ, आँखें बंद कर दो। हनुमान ने कहा मैं आँखें बंद करूँगा, आप जाना मत, आप यहीं पर बैठो, मैं आँखें बंद करके गाऊँगा ऐसे। तो नारद ने कहा ठीक है मैं गाऊँ, मैं बैठा हूँ। एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, हनुमान ने गाना शुरू किया। वो गाने में ऐसा उन्होंने ट्यून मेलोडीज गाए कि जिससे पत्थर पिघल जाता है, हनुमान के गाने से पत्थर पिघलने लगा। जिस पत्थर पे, जिस आसन पे नारद जी बैठे थे, वो पत्थर में वीणा डूबने लगी और वीणा फंस गई पत्थर के अंदर, पानी बनने लगी। और अगर और थोड़ा गा लिया होता, और थोड़ा गाते तो वीणा खुद पानी बन जाती। तो नारद मुनि ने रोक लिया, ठीक है मैंने सुन लिया। हनुमान को रोका, आप अपनी आंखें खोल दो, तुम सबसे सुंदर सबसे उत्तम म्यूजिशियन बन गए हो, यू हैव बिकम। और जैसे ही बन हुआ गाना तो पत्थर पत्थर बन गया, जो पिघला हुआ पत्थर था पत्थर बन गया और वीणा फंस गई उसके अंदर। और नारद मुनि को वीणा निकालने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर केसरी आए। केसरी आए, नारद जी आप ठीक तो हो? क्या हुआ, कोई समस्या है? बोले नहीं कुछ नहीं आप। बोले हनुमान तुमने क्या नारद जी को परेशान किया? बोले नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। तो नारद ने देखा, नारद ने कहा कि मेरी वीणा फंस गई है इसके अंदर पत्थर के अंदर, है ना। तो फिर हनुमान को फिर कहा गया कि इसको बाहर निकालो। सो फिर हनुमान जी हाँ लॉजिकली तो ऐसा ही है, पत्थर बना उसको फिर से पिघला लो तभी तो वीणा आएगी। तो फिर आप बोलो फिर से आप गाना शुरू करो, फिर से गाना शुरू किया, फिर वीणा निकाली बाहर। फिर वो बहुत खुश हो गए। फिर नारद ने कहा आप, मैं जाता हूँ। हनुमान ने कहा अभी भी नहीं जा सकते आप, तो अब क्या चाहिए आपको? तो बोले अब मेरी ये इच्छा है कि आप हमारे घर में पधारिए, घर के हर एक कोने में आप एक बार चलिए, हर एक कोने में जाइए, ऐसे घूमिए चलिए। मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके चरण मेरे घर के हर एक भूमि पे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वरदान। तो नारद ने कहा ठीक है वो भी संभव। तो वो केसरी के निवास में गए, देखो कितना बड़ा है, आपको वैष्णव को घर पे बुलाने का क्या परिणाम मिलता है देखो। कि उन्होंने बुलाया, कि घर पे बुलाया और हर एक कमरे में, एक एक कोने में नारद मुनि को कहा कि आप चलिए। और फिर हर एक कमरे में नारद मुनि चले और इस तरह से फिर वो आगे गए। लेकिन आगे जाने से पहले वो तो चले गए, लेकिन हनुमान ने फिर कहा कि पिताश्री क्या मुझे कोई शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हनुमान जी को केसरी ने कहा कि हाँ अवश्य बेटा, मैं तुम्हें, तुम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए गुरु कौन होंगे वो मैं सोच रहा हूँ। तो फिर केसरी ने कहा कि एक काम करो, बहुत प्रसिद्ध गुरु है सूर्यदेव, तुम सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करो, वो तुम्हारे गुरु बनने के योग्य है। तो बोले कि ठीक है, तो मैं सूर्यदेव के पास जाता हूँ फिर, तो सूर्यदेव तो सूर्यदेव हनुमान ने प्रस्थान किया सूर्यदेव की ओर और सूर्यदेव जैसे देखा कि हनुमान हनुमान उनकी ओर आ रहा है तो उनकी आंखें नॉट अगेन फिर से नहीं हनुमान फिर से और वो भी मेरी ओर आ रहा है तो अब क्या कहिए इसको, अब तो ये बड़ा भी हो गया उस समय तो मुझे निकलने का प्रयास किया था अब क्या करेगा ये। लेकिन फिर सोचे कि बड़ा हो गया तो शायद अभी बदमाशी नहीं करेगा तो वहाँ पर आए तो जैसे वो प्रणाम किया हनुमान ने तो सूर्य को अच्छा लगा, प्रणाम किया मुझे वेरी गुड, क्या चाहिए तुम्हें इधर, क्योंकि उनको थोड़ा डर भी था कि कुछ भी कर सकता है। तो उनको पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या निकलना चाहते हो। तो हनुमान ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो मैं छोटा था ना, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अज्ञान में कर दिया, उसको ध्यान में मत लीजिए, लेकिन वो अज्ञान अभी भी भरा पड़ा हुआ है मेरे मन में, इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने सुना कि आप बड़े पंडित हो तो आप कृपा करके मुझे अभ्यास ज्ञान दीजिए, मैं आपके गुरुकुल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि ऐसे पहले नीचे देखा सूर्य का रथ है, उसका बहुत बड़ा विशाल, सूर्य के रथ के सामने बहुत बड़ा विशाल वो जगह है बैठने का सूर्य के सामने, तो वहाँ पर 60 लाख ऋषि बैठे हुए थे, 60 लाख 6 मिलियन 60 लाख ऋषि वहाँ पर एजुकेशन ले रहे थे, सब लोग रूक साम यजुर के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। सो कहा कि सॉरी नो एडमिशन, बैठने की जगह नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। सूर्य को कहा देखो हनुमान के विषय में किसी ने सोचा कि हनुमान जाएंगे सूर्य के पास बढ़ेंगे नो एडमिशन, बाद में आना, वैकेंसी नहीं है। तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़े खड़े अभ्यास कर लूँगा, आप बैठने दो उनको 60 लाख को 6 लाख को 60 लाख, मैं खड़े खड़े करूँगा। तो फिर सूर्य ने कहा तुम खड़े खड़े भी विद्या स्वीकार नहीं कर सकते मुझसे, क्योंकि मैं तो ऑर्बिट में घूमता रहता हूँ, तो तुम कैसे करोगे विद्या। तो कोई बात नहीं, मैं भी घूमूंगा तुम्हारे साथ साथ। सूर्य ये कौन है, ये सूर्य की ऑर्बिट में ये भी घूमेगा हनुमान जी साथ साथ। तो लेकिन बोले तुम्हें मुझे शर्त ये होगी कि तुम्हें मेरे और फेस करना पड़ेगा और उल्टा चलना पड़ेगा। तो बोले मंजूर है, देखो कितने प्रभाव कितने शक्तिशाली हनुमान, सूर्य की ये ऑर्बिट में क्या बोलते हैं उसको गति में उसका ऑर्बिट में हनुमान जी उल्टे पांव चले, उल्टे पांव 60 बार ऑर्बिट में घूमे तब तक सारा विज्ञान उन्होंने स्वीकार कर लिया, 60 राउंड्स ऑर्बिट्स सारा विज्ञान सब ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। सो उसके बाद वो जाने की तैयारी में कर रहे थे तो कहा कि मुझे क्या गुरु दक्षिणा देना होगा आपको, कुछ गुरु दक्षिणा मैं दूं। तो गुरु दक्षिणा के विषय में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो, पहले इंद्र हनुमान ने कहा इंद्र का मुकुट दे दूं, आप मांगो उधर। उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र है वो राजा बनना चाहता है, वो राजा बनना चाहिए। सो जब वो राजा बनेगा उसके बाद तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी, उसकी जीवन की रक्षा करनी पड़ेगी। तो हनुमान ने कहा ओ अच्छा ऐसी बात है, बताइए, मैं जैसे वो राजा बताओ मैं उसकी सेवा करूँगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं उसकी लाइफ की रक्षा करूँगा हमेशा। तो कहा कि वो उस मित्र का नाम है सुग्रीव, और वो सूर्य का पुत्र है, तो आप उसकी रक्षा करो। तो एज सच दैट इज अनदर स्टोरी। अभी ये सूर्य का पुत्र कैसे हुआ सुग्रीव, ये आप सुनना चाहते हो या फिर आई स्टॉप हियर? स्टॉप हियर। अच्छा, तो सुग्रीव जो है वो किस तरह से सूर्य के पुत्र बने, उसके विषय में ऐसी कथा है कि एक स्त्री थी, उसका नाम था नारायण और उनके पति का नाम था उग्रतपस। उग्रतपस करके नाम था। उग्रतपस का अर्थ होता है कि जो उग्र तपस्या करता है, लेकिन ये उग्रतपस केवल नाम का ही उग्रतपस था, उनके पूरे लाइफ में उसने कभी कोई तपस्या नहीं की थी उग्रतपस ने, और पूरा लाइफ केवल इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग ही करता रहा और कुछ नहीं। तो इंद्रिय भोग करते 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 उसको रोग हो गया और वो उसका अंग काम करने बंद हो गए, यू नो पैरालाइज हो गया पूरा शरीर उसका इंद्रिय भोग करते करते, तो अंग काम करने बंद हो गए। और उसको कैसे, उसकी पत्नी को उसको बास्केट में बिठा करके ले जाना पड़ता सब जगह, उठा करके बास्केट में बिठा करके, तो अलग अलग जगह जाता। और ऐसा नहीं, उसका इंद्रिय भोग तो अभी भी चालू था लेकिन बास्केट में जाते थे वो इंद्रिय भोग के लिए। तो एक बार उस उग्र तपस ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे ये सचिन सच एक पर्टिकुलर किसी वेश्या का नाम दिया, बोले मुझे उसके पास ले जाओ इंद्रिय भोग करने के लिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो पत्नी उसकी बास्केट में उठा करके उसको इंद्रिय भोग करने के लिए वहाँ पर ले जा रही थी। जब वहाँ पर वो जा रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि मिली जिसका नाम था भीष्मांड ऋषि। तो वो जो भीष्मांड ऋषि थे उनको किसी राजा के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो इसके कारण उनको एक गदा के अंदर रख दिया गया था, गदा में उस ऋषि को गदा में स्थान दिया गया था रहने के लिए, तुम गदा में ही रहोगे हमेशा ऐसा करके। और वो खुद भी परेशान थे कि मुझे क्या, बस यू नो गदा में रोक दिया गया है, बता दिया गया। लेकिन वो त्रिकालज्ञ थे, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते थे, और वो देख लिया कि यहाँ से वो जा रहे हैं और ये यू नो इनको ये उग्र तपस किसी वेश्या के घर पे जा रहे हैं। तो उसने कहा उग्र तपस को, हे उग्र तपस ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे जीवन कितना बर्बाद हो चुका है, देखो तुम कितने निम्न नीच हो कि पत्नी को, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी काम नहीं करता है तो तुम अपनी पत्नी की सहायता से इंद्रिय भोग करने के लिए किसी वेश्या के पास जा रहे हो, यू नो ये कितना भयानक कार्य है, तुम कितना घिनौनी हरकत है तुम्हारी, ये पाप कितने पापी हो तुम, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ, ऋषि गदा में से भी श्राप दे सकते। तो श्राप दिया क्या कि तुम कल सुबह सूर्य होते ही मर जाओ, सूर्योदय यू नो होते ही मर जाओ, तुम मर ही जाओ तुम्हें। और नारायण ने सुन लिया कि उसको श्राप मिल गया कि जैसे सूर्योदय होगा तुम्हारा कल तुम मर जाओगे। तो नारायण बड़ी तेजस्वी पतिव्रता नारी थी, क्योंकि इतना सेवा उसका पति का किया था उसने, तो उसको बड़ी शक्ति थी उसके पास। तो बोले मेरे पति को तुम मारोगे श्राप देकर, मैं सूर्य को श्राप दे देती हूँ। सूर्य को श्राप दिया कि तुम्हारा उदय ही ना हो, कल तुम्हारा उदय नहीं होगा, कल ही मरने का था, कल का दिन उदय मत होना, परसों हो जाना, तो कल तो नहीं हो सकते तुम, सॉरी कल सनराइज नहीं होगा। तो श्राप दे दिया। तो अभी सुबह सुबह ऐसा हुआ कि अरुण जो है, जो उनका सारथी सूर्यदेव का, वो रेडी होकर आ गए घोड़े को लगाम लगाने के लिए, अरुण सारथी उनके, तो बैठ गए वहाँ पर, बैठे तो सूर्यदेव स्टैचू के रूप में थे, सूर्यदेव बैठे थे एक जगह पर। तो कहा कि क्या हुआ, क्यों चलना नहीं? तो सूर्य ने कहा आज हॉलीडे है, आज रविवार है ना। तो बोले मैं मेरी लाइफ में कभी भी कोई हॉलीडे आता ही नहीं है, है ना। अगर मैं कहीं रुक जाता हूँ, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से, सौभाग्य से आज मुझे एक रजा हॉलीडे प्राप्त हुआ है, छुट्टी मिली है मुझे। तो आज मेरा इच्छा है कि आज मैं वैकेशन मना जाता हूँ, है ना। और साथ में आज तुम्हारा भी हॉलीडे अरुण का, तुम्हारी भी छुट्टी, तुम भी जो करना है जो यहाँ घूमना घूमना खाना पीना जो करना जाओ, है ना, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। तो फिर अरुण ने कहा लेकिन कब तक के लिए कर रहे हैं? बोले आज के दिन बस, कल से वापस शुरू, आज के दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी, आज आप जो करना है करो। ओके, तो अरुण ने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि आज मैं कुछ करता हूँ, कुछ घूमना जाता हूँ। तो मैं सोचा कि कहाँ जाओ, स्वर्ग की यात्रा कर गए। तो अरुण गए स्वर्ग की यात्रा करने के लिए। स्वर्ग की यात्रा गए तो पता पड़ा कि वहाँ पर इंद्र ने एक पार्टी का आयोजन किया है, इंद्र ने एक पार्टी बनाई थी और वो पार्टी में सिलेक्टेड गेस्ट थे। अरुण सोच रहे थे कि चलो वहाँ पर बहुत फिस्ट विस्ट होगा, कुछ खाना पीना अच्छा होगा, यू नो लाइक नाइस पिज्ज़ा वगैरह कुछ। तो वहाँ पर वो गए अरुण और वहाँ पर जाके पता पड़ा फास्ट पार्टी है, खुशबू आ रही है। तो गेट के बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा एक्सक्यूज मी, सॉरी कहाँ जाना है आपको? अरे पार्टी में। बोले पार्टी में आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, यू नो आप क्यों नहीं जा सकते? तो कहा गया कि यहाँ पर तो इंद्र के सिलेक्टेड गेस्ट है, वही जा सकते और कोई नहीं जा सकते, है ना। तो इंद्र को पता पड़ गया, इंद्र के सिलेक्टेड गेस्ट है ऐसा बात हुआ, इंद्र को नहीं पता पड़ा। लेकिन इंद्र के सिलेक्टेड गेस्ट है तो फिर बोले तुम्हें अगर जाना है अंदर तो तुम इनविटेशन कार्ड लेके आओ, अगर इंद्र ने बुलाया है तो कार्ड लेके आओ, है ना, पास पास चाहिए अंदर जाने के लिए, तो पास लेके आओ। तो ये अरुण सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो बाद में सोचते सोचते उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि कोई तो उपाय होना चाहिए अंदर जाने के लिए। तो फिर सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक डांसर भी जानता हूँ, नृत्यांगना, नृत्यांगना को रोकना मुश्किल नहीं होगा, जाने को परमिशन देने मुश्किल नहीं होगा। तो अरुण में से अरुणी बन गए, और ये जब बनते हैं ना अरुण में से अरुणी ऐसे, तो वैसा नहीं कि वो यू नो आपके आजकल के जो टीवी शो में बनते हैं वैसे वो स्त्री का कपड़ा पहन लिया फिर ऐसे नहीं बने थे, वो सच्ची में स्त्री का शरीर ले लिया था। अरुण में से अरुणी बन गए, पूरा शरीर बदल गया अरुणी, और बड़े सुंदर ना, कोई आप सिलेक्शन करना है तो कोई ऐसा वैसा तो शरीर तो लेंगे नहीं, तो बड़ा सुंदर वाला शरीर लिया उन्होंने अरुणी का। और वो गेट के पास गए, और गेट के पास गए तो इतनी सुंदर स्त्री और इतना चमक रही थी एकदम। तो वहाँ पर फिर भी उस वहाँ पर रोका गया, कौन है आप, परमिशन कैसे, क्या है आप, कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं मेनका की मेकअप असिस्टेंट हूँ, मेनका को मेकअप करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उनके चेहरे पर एक लाइन ड्रॉ करनी रह गई है, अब वो लाइन ड्रॉ नहीं हुई तो मेनका डांस नहीं करेगी, अब मेनका डांस नहीं करेगी तो तुम्हारे स्वामी इंद्र परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। तो बोले ठीक है आप जाइए। तो वहाँ पर अंदर चले गए, मेकअप अरुणी वहाँ पहुँच गए और मेनका का डांस भी हुआ, और जैसे डांस हो गया उसके कुछ तो डांस करते इंद्र की नज़र गई अरुणी के ऊपर, वो मेनका डांस करती थी और ये इंद्र अरुणी को ही देखते रहे, और अरुणी को देखते रहे, डांस ख़त्म हो गया और फिर सब जाने लगे, अरुणी भी जाने लगे, रुको 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 इधर आओ। तो अरुणी को बुलाया, अरुणी ने सोचा ये तो मेनका से भी ज़्यादा सुंदर है, अरुणी तो इससे भी अधिक सुंदर है। तो उन्होंने पूरी पार्टी कैंसिल कर दी, बोले आज कोई पार्टी नहीं होगी। और अरुणी को कहा कि कौन हो तुम? महाराज मैं मेनका की मेकअप असिस्टेंट हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो इन्होंने पूछा तुम अब मेरे साथ रहोगी हमेशा, यू नो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके साथ, मुझे पता है आप कौन है, यू नो। इंद्राणी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें इंद्राणी के बाजू में बिठा दूंगा। इतनी सुंदर थी, एक्चुअली इंद्र का है ही ऐसा काम, वो किसी को भी देखते वो बैठ जाए इंद्राणी के बाजू में बिठाने के लिए। तो इंद्राणी अरुण ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं अरुणी का बाजू में, इंद्राणी के बाजू में नहीं बैठ सकती। बोले क्यों? क्योंकि मैं नहीं सकता हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्या तुम अपनी पत्नी के पास में कोई पुरुष को बिठाओगे? मैं नहीं बैठ सकता। बोले मैं पुरुष हूँ। ये सारी चालबाजी है ना, मेरे सामने नहीं करना। इन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम स्त्री हो। नहीं मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ मैं तो ये स्वरूप, मैंने शरीर बदला है, इस तरह से चेंज किया है ताकि मुझे अंदर एंट्री मिल जाए। इंद्र ने कहा तुम कुछ भी बोलो, तुम आज तक मैंने देखी हुई सभी कन्या में सबसे सुंदर कन्या हो। तो कहा कि अगर अरुण ने कहा कि अगर तुम मुझे गर्भ दोगे, समझ लो तुम्हारे बेटे का पालन पोषण कौन करेगा, मैं कौन हूँ आप जानो, मैं अरुण हूँ, अरुण सूर्य का ड्राइवर, सूर्य का ड्राइव करता हूँ, सूर्य देव को ड्राइव, मैं तो आपके, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करके मैं आपको, यू नो, एज ए वुमन अरुणी के रूप में तुम्हें आनंद तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र का पालन कौन करेगा, माता तो होगी ही नहीं कोई, मैं तो तुरंत चला जाऊँगा, यू नो, सूर्य मेरे अपने स्वामी के पास। लेकिन वो इंद्र इतने हठीले थे कि मैं नहीं, कुछ मुझे कुछ नहीं सुनना है, यू नो, और फोर्स किया और अरुणी को कन्विंस किया कैसे भी करके तुम्हें मेरे साथ इंद्रिय भोग करना ही पड़ेगा ऐसे। तो अरुणी ने जन्म दिया एक बालक को, देवता को, और फिर अरुणी चले गई, यू नो। तो सूर्यदेव भी शुरू हो गए, यू नो, अपनी गति के, क्योंकि अरुणी थोड़ा लेट हो गए थे, अरुण वह इतना सारा झमेला हो गया इधर, तो सूर्यदेव को चलने में थोड़ा लेट हो गए। तो सूर्यदेव ने सोचा कि मैं खुद ही अभी चलाता हूँ, जो ड्राइवर नहीं है तो क्या हुआ, सेल्फ ड्राइविंग कर लेता हूँ। तो सेल्फ ड्राइविंग करने ही वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे अरुण आ गया और आके उन्होंने तुरंत वो क्या बोलते उसको लगाम पकड़ ली। तो सूर्य ने पूछा कहाँ गए थे, यू नो, क्यों लेट आया आज, क्या हुआ, गया बताओ। मैं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही, बस कुछ नहीं हुआ। बोले क्या हुआ बताओ। तो मैं इंद्र के प्लेनेट पे गया था, इंद्र के लोक पर, और मैंने वहाँ पुत्र जन्म लिया। जो सूर्यदेव बोले पुत्र, पुरुष तुम, पुरुष पुत्र जन्म दिया। तो फिर पूरी स्टोरी बताई, यू नो, कि हमारे पास बहुत कम समय है, सारी कथा अभी बता दूंगा, यू नो, तो पॉसिबल नहीं, हम शुरू कर देते चलना, यू नो। सो फिर जब बताया बीच में कि मैं ऐसा था, तो सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा क्या किया था तुमने? तो बोले ऐसा मैं स्वरूप लिया था अरुणी का स्वरूप लिया था। और इंद्रदेव आकर्षित हो गए, कहा कि तुम मेनका से भी सुंदर हो। अच्छा, तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है, काम करो, मुझे वो स्वरूप दिखाओ। तो बोले कि लेट हो रहा है, चलो मैं पुरुष हूँ लेट हो रहा है चलो, तो मैं नहीं एक सेकंड लगेगी, मुझे वो दर्शन कर रहा है, देखना है कैसा स्वरूप लिया था तुमने। अरुण ने कहा कि देखो वो स्वरूप देख के समस्या बढ़ जाएगी, आप मत देखो, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मत देखिए। तो कहा मैं स्वामी हूँ या तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तो कहा कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा ये स्वरूप। तो वो स्वरूप उनको दिखाया सूर्य के देवता को, सूर्य को। तो जैसे अरुणी वो बने तो तुरंत फिर उनको दूसरा जन्म, दूसरे बेटे अरुण को दूसरा सूर्य का पुत्र प्राप्त हुआ है ना। तो आप सोचिए भी कहाँ बेचारा सूर्य का ड्राइवर गाड़ी सूर्य चलाता है, रथ चलाता है, वो गलती तो नारायण ने श्राप दे दिया और यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए भाई साहब स्वर्ग में चले, और स्वर्ग में चले तो वहाँ एक मुसीबत में फंसा था, एक बेटे को जन्म भी दे के आया, इतना काफी नहीं था तो सूर्यदेव ने जन्म दिया, यू नो सूर्यदेव ने बेटा दे दिया। So, सूर्यदेव ने जन्म दिया। तो यहाँ पर एक चीज और भी पाई जाती है, क्या चीज पाई जाती है, क्या
स्त्री ने
हाँ
स्त्री ने
ये चीज पाई जाती है कि ये बड़े बड़े देवता भी है ना विष्णु का चिंतन निरंतर नहीं करते, कभी कभी करते है ना, निरंतर नहीं करते, इसलिए देवताओं से भी वैष्णव महान होते, क्योंकि वो भक्त जो होते हैं वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे, 24 घंटे विष्णु का चिंतन करते, इसलिए देवताओं सब भक्तों की उपासना करते हैं, सर्वदेव माय गुरु, सारे देवता एक साइड और वैष्णव एक साइड, वैष्णव इतने महान होते हैं, वो इंद्रिय भोग में नहीं फंसते। इतने सारे देवी देवता थे लेकिन हनुमान के समक्ष नहीं आ पाए, क्योंकि हनुमान निरंतर भक्ति में लगे हुए। इतने सारे देवी देवता थे लेकिन प्रहलाद के सामने कुछ नहीं थे, प्रहलाद निरंतर भगवान के चिंतन में लगे थे। तो ये यहाँ पर अब ये चीज़ पाई जाती है कि इतने सारे देवी देवता हैं लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे है कि जो निरंतर विष्णु का चिंतन करते होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे, है ना। जनरली तो कभी राहु आ जाता है, कोई यू नो कोई असुर आता है, जब इंद्रिय भोग में समस्या खड़ी होती है तब विष्णु का चिंतन करते हैं। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि ये कथा जो मैंने बताई अभी, ये कथा विष्णु पुराण में से है, तो ये कथा जो कोई सुनेगा वो स्वर्ग में जाने का जो आकर्षण है वो उससे मुक्त हो जाएगा। बोले स्वर्ग में गया तो पुरुष का स्त्री बना, स्त्री का एक बेटा, बेटा दूसरा बेटा, यू नो तो दो दो बेटे को लेकर के यू नो दो देवता प्रकट हुए, यू नो तो भी क्या करे इसका। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने इंद्र को कहा कि सारी समस्या की प्रॉब्लम यू नो सारी जड़ है तुम अपनी विषय वासना को संतुष्ट नहीं कर पाए, कंट्रोल वश में नहीं कर पाए, और इस अरुणी अरुण को यू नो अन्य ऐसे सारी दो दो पुत्र, एक बाप को माँ बिना दो दो पुत्र प्राप्त हुए यू नो अब क्या करे, वो माँ है क्या करे, यू नो और परिणाम ये था कि ये स्वर्ग में जा भी नहीं सकते वापिस। इंद्र ने ऐसा कहा कि ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, मुझे और किसी को देना पड़ेगा ये। फिर इंद्र ने जब ये सोचा कि ऋक्षराज वरनस करके कोई जगह है, वहाँ के ऋक्षराज राजा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, और उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया है, तपस्या की थी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, तो यहाँ का उधर सेटिंग कर सकते हैं, यू नो ये इसको पुत्र चाहिए, मेरे पास दो दो एक्स्ट्रा है तो एक दे सकता हूँ किसी को। तो वहाँ पर चले गए सो जनरली क्या होता है, देवता लोग को स्वर्ग में कुछ नहीं चाहिए तो पृथ्वी पर किसी को दान दे देते हैं, और पृथ्वी वाला सोचता है कि देखो मेरे पास दान आ गया, इंद्र ने वरदान दिया, इंद्र ने वरदान दिया, है ना। सो इंद्र उनके पास आए और कहा कि तुम एक पांव पर खड़े हो, मेरे पास दो बेटे हैं, क्या बोलो, आई हैव टू बेबीज, तो ये दोनों ही तुम्हारे बेटे बनेंगे, तुम एक एक बेटा चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें दो ही बेटा दे देता हूँ, दो दो, क्योंकि आई हैव इसका एडजस्टमेंट करने का है मुझे। तो एक का नाम हुआ बाली और दूसरे का नाम हुआ सुग्रीव। जो इंद्र से जन्म हुआ था वो है बाली, और जो सूर्य से जन्म हुआ था वो है सुग्रीव। तो हनुमान को दक्षिणा में ये मांगा गया था कि तुम सुग्रीव, सूर्य ने उनको रक्षा की थी ना, तो कहा कि तुम मेरे पुत्र को जीवन रक्षा करोगे, प्राण रक्षा करोगे और उनकी सेवा करोगे। तो ये गुरु दक्षिणा हनुमान जी का प्रॉमिस, मैं अब सुग्रीव मेरा महाराज रहेंगे सुग्रीव जी, और मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। तो इस तरह से हनुमान जी ने विद्या खत्म करके फिर वापिस आया, फिर आगे जैसे मैंने बताया रामचंद्र का मिलाप हुआ, रामचंद्र को मिले, निकलेस को पहचान लिया, और फिर उन्होंने सुग्रीव की सेवा करते करते रामचंद्र को प्राप्त हुए, और रामचंद्र ने फिर उनको अपनी सेवा में लगाया, सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा लंका, यू नो, उस समय उनकी ये सारी शक्ति जो थी वो कोई याद नहीं कर रहा था, ऐसे ही भटक रहे थे हनुमान इधर उधर इधर उधर। लेकिन बाद में जाम्बवन जी जो है उनको सारी घटना पता थी, इसलिए जाम्बवन जी ने उनको कहा, पहले तो उनको पता नहीं था सीता कहाँ है, तो वो जो इसका भाई इसका भाई जटायु का भाई वो वहाँ पर था, तो वहाँ इतने सारे हनुमान ये सारे बंदरों को देख के तो पहले तो उसको इच्छा हुई कि मैं इसको खा जाऊँगा, लेकिन बाद में उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे एक भाई है जटायु का, उसका वध हो गया था ऐसा, तो फिर बाद में उन्होंने आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी योग शक्ति के बल से ये देख सकता हूँ कि रावण लंका का जो राजा है वो सीता को चुरा के ले गया है, इतने समय से ढूंढ रहे थे नहीं मिल रही थी सीता, और देखो कैसा लॉटरी लग गया। तो बोले तुमने मेरे भाई को बचाया था, यू नो मेरे भाई को एक बार, यू नो व्हाट यू से, रामचंद्र ने मेरे भाई के अग्नि संस्कार किया था, और रामचंद्र मेरे भाई को पिता मानते थे, मेरे पिता समान मानते थे, और तुम सब उनकी सेवा करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य सहाय करूँगा, अभी जाना पड़ेगा 100 यज्ञ कूद के समुंदर के पार। तो सब लोग रेडी हो गए, एकदम इकट्ठा हो गए, बाद में कहा कि यार 100 यज्ञ समुंदर के पास जाएंगे कैसे, वहाँ भी सब लोग निराश हो गए, क्या करें कैसे जाएंगे। तो फिर जामवन ने कहा हनुमान जी को कि तुम भूल गए तुम्हारे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, ये शक्ति है, वो सारी शक्ति याद पड़े, पूरा याद करवा दिया। तो हनुमान ने एक झंप लगाया जय श्री राम बोल के, और फिर चले गए लंका। फिर वहाँ पर भी सीता को मिलने के बाद थोड़ा भोजन किया, फ्रूट्स वगैरह खाया, अशोक वाटिका नष्ट कर दी, और एक ही पहले दिन में अशोक वाटिका नष्ट कर दी, रावण के पुत्र को भी मार दिया पहले दिन में, सैनिकों को मार दिया, कुछ पुत्र को मार दिया, वो ये क्या हो रहा है, रावण सोचता है क्या हो रहा है सब, अचानक कितनी शक्ति है हनुमान में, और जाके उतने काफ़ी नहीं था तो रावण का दर्शन भी कर लिया, रावण के पास भी पहुंच गया, रावण के पास पहुंचने के बाद रावण के ऊपर ऊंचे आसन पे भी बैठ गया, बोलो अब क्या कहना है। रावण से ऊंचे आसन पे बैठ गए, है ना, ऊपर पूंछ को वैसे बना करके, और फिर चेतावनी भी दे दी, वार्निंग दे दी, बोले सीता को छोड़ दो नहीं तो खत्म हो जाओगे, रावण खत्म कर, बोले क्या सीता को छोड़ दो रावण खत्म, राम खत्म कर दे, एक बंदर कहीं का मुझे धमकी दे रहा है, मैं रावण, बोले हाँ मैं जानता हूँ तुम रावण को, वो सहस्र बाहू ने कैसे कोख में डाल के घुमाई थी तुम्हें, ये कैसे पता पड़ा तुम्हें। सहस्र बाहू नाम का राजा था जिसने रावण को ऐसे अपनी कोख में रखा था, बगल में दबा कर, बाली ने भी किया था, सहस्र बाहू ने भी किया था, सहस्र बाहू ने तो उसको अरेस्ट करके बंदी बना के फेंक दिया था, वो बाली ने किया था, वो घूम रहा था बाली, और सहस्त्र बाहू ने उसको अरेस्ट कर दिया, बंदी बना दिया था, जेल में फेंक पूर दिया था, और उसको सहस्त्र भाऊ को, सहस्त्र भाऊ के सामने हार गया था, बड़ी डिंगे मार रहा है तू, और मुझे पता है तुम्हारा इतिहास क्या है, बाली ने कैसे किया था, सहस्त्र भाऊ ने क्या किया सब पता है, तो हनुमान रावण सुन रहे हो ये कौन है। तो बाद में सोचा लेकिन मेरा तो वध हो ही नहीं सकता, मैं किसी मनुष्य मैं किसी देवता से नहीं मर सकता, ये नहीं कर सकता, वो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तू एक छोटा सा तुच्छ हनुमान मुझे क्या धमकी दे रहा है, अभी दिखाता हूँ तुझे, जला दो इसकी पूंछ। पूंछ जलाएगा ठीक है, जला पूंछ जलाएगा, पूंछ जलाएंगे तो पहले तो पूंछ जलाने के बाद पूंछ छोटी कर दी, छोटी करने के बाद जलाई तो हनुमान को तो कुछ नहीं हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, बट मेरी पूंछ को ठंडी ठंडी लग रही है, वो वरदान भी तो था कि जलेगा नहीं, तो बोले अब कुछ करके जाता हूँ, ऐसे तो जाऊँगा नहीं, जाना तो है वापस, मैं ऐसे कैसे जाऊँ, कुछ करके जाता हूँ, ऐसा कुछ काम करे कि सबकी आंखें ऐसा खुल जाए। तो पूरी लंका जलाने का निश्चय किया, सोने की लंका पूरी जला डाली, और रावण देखता रह गया ये क्या हो रहा है, मेरी लंका एक ही दिन में मेरे पुत्र का वध अशोक वाटिका उड़ा दी, लंका भी जला दी, क्या हो रहा है। और हनुमान ने जाके कहा मैं चाहूँ तो वहाँ पर ख़त्म भी कर सकता था रावण को, आई कुड किल, बट सीता ने ना बोला था, नहीं तो मैं ख़त्म भी कर देता रावण को वहीं पर, एक काफ़ी, देखो इतना सेवक, राम का सेवक कितनी शक्ति है। तो वेल आगे बहुत सारी लंबी कथाएँ हैं ऐसे रामचंद्र की, बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे जब हमें अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आज के दिन हमने केवल हनुमान जी की गुणगान गाए हैं, श्री रामचंद्र भगवान के भक्त हनुमान के जय।